यदि आप मुझे पूछें तो मेरे लिए स्वरूप दामोदर प्रभु का परिचय है कि वो न केवल मेरे बड़े भाई हैं, बल्कि मैं उन्हें अपना पिता स्वरूप मानता हूं, क्योंकि इस कृष्ण भावनामृत संघ में उन्होंने ही मुझे जोड़ा और उन्हीं की कृपा से आज जो कुछ मैं हूं आपके सामने हूं, और दूसरा जन्म मुझे उन्हीं की कृपा से मिला है। तो व्यक्तिगत रूप से मैं उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो कुछ उन्होंने मेरे लिए किया है। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के पांचवें दिन। आशा करते हैं आप लोगों को ये श्रीमद् भागवत की यात्रा पसंद आ रही होगी। कितने लोग यात्रा की शुरुआत से हमारे साथ हैं, हाथ ऊपर कीजिए, और कितने लोग आज ही यात्रा ज्वाइन किए हैं, तो सभी का स्वागत है आज की कथा में। कल हमने हमारी कथा में सुना, एते चाम शकल पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण इन्होंने केवल शुरुआत में ही इन तीन असुरों का वध कर ये स्थापित कर दिया। कौन से तीन असुर? पुतना, शकटासुर और तृणावर्त। इनका वध कर इनका उद्धार कर भगवान ने ये स्थापित कर दिया कि वो स्वयं सबके स्रोत, वो स्वयं अवतारी, जो भगवान जिनकी परिभाषा कल हमने सुनी, यही है वो। जयति जयति देवो देवकी नंदनोयम्, जयति जयति वृष्णि वंश प्रदीप, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुंद। जयकार हो उन देवकी नंदन का, जयकार हो उन वृष्णि वंश प्रदीप का, जयकार हो उन भगवान का जिनके अंग अति कोमल हैं, अति मृदु हैं, और जयकार हो उन भगवान का जो अवतरित हुए हैं इस पृथ्वी का भार कम करने के लिए। तो एक कारण कल हमने लिया था भगवान की मृद भक्षण लीला से कि भगवान ने माटी क्यों खाई, क्योंकि भगवान ने सोचा कि मैं पृथ्वी का भार कम करने आया हूं तो मैं केवल 5 वर्ष का हूं, तो अभी से मैं पृथ्वी का भार कैसे कम करना शुरू करूं। तो इसलिए भगवान ने पृथ्वी का थोड़ा सा भाग लिया माटी के रूप में, ब्रजरज के रूप में, और उसे हम अपने अंदर डाला, और पृथ्वी का भार कम करना भगवान ने उस तरीके से शुरू किया। तो भगवान ने अपनी मृद भक्षण लीला में अपने बहुत से प्रयोजन सिद्ध किए। भगवान हम सबको दिखाना चाहते थे कि चाहे वो एक बालक के रूप में आए, चाहे वो विश्व रूप में आए, वो हर समय अपनी भगवत्ता बनाए रखते हैं और वो कोई सर्वसाधारण नहीं है। इसलिए जब परीक्षित महाराज ने अपने हृदय से यशोदा माई का गुणगान करना चाहा, तो परीक्षित महाराज इस मृद भक्षण लीला के पश्चात वो सुखदेव गोस्वामी को रोकते हैं। देखिए परीक्षित महाराज का उत्साह कि हर एक लीला के पश्चात वो सुखदेव गोस्वामी को धन्यवाद कर रहे हैं और वो श्रवण करने के पश्चात उनकी क्या स्थिति है वो सुखदेव गोस्वामी को बता रहे हैं। इस प्रकार के श्रोता हमको बनना है कि जब हम भी श्रवण करें तो हम उस लीला से क्या सीखे हैं उसका हम अनुमोदन करें, जैसे कि परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को थोड़ा रोका, कथा को थोड़ा विराम दीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। और परीक्षित महाराज कहते हैं, नंद किम अकरोद ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम हरि। क्या महाभाग्य है इस यशोदा का, क्या महाभाग्य है नंद महाराज का कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो एक शिशु के रूप में, इनके पुत्र के रूप में वो अवतरित हुए। क्या महाभाग है इनका। और इतना ही नहीं कि वो भगवान जो आत्माराम हैं, वो भगवान जो हम सबको जिला रहे हैं, पपोस्तनम, वो माता यशोदा का स्तनपान कर रहे हैं। और माता यशोदा का स्तनपान करने हेतु वो इतने उतावले हैं। तो जैसे ही परीक्षित महाराज अब सुखदेव गोस्वामी को ये संकेत दे रहे हैं, माता यशोदा और कृष्ण इनके संबंध के विषय में, और वो भी कैसा संबंध, माता यशोदा स्तनपान करा रही है, केवल स्तनपान नहीं बल्कि अपने प्रेम का पान करा रही है भगवान श्री कृष्ण को। तो इस श्लोक को सुनने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी, उन्हें कुछ याद आ रहा है। उन्हें अब क्या याद आ रहा है, उन्हें वो दृश्य याद आ रहा है। दिवाली का वो दिन था जब माता यशोदा अपने ही हाथों से स्वयं माता यशोदा वो दही मथ रही थी। और उस दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीला हुई और वो आगे सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, श्री दामोदर लीला। जैसे ही परीक्षित महाराज के मुख से उन्होंने सुना कि परीक्षित महाराज ने यशोदा का गुणगान किया है भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराते हुए, तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी अब चले गए उस लीला का स्मरण करते हुए। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें हर वस्तु, हर स्थिति, हर व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण से संबंधित देखना चाहिए। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जत निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। इस सुंदर श्लोक में कहा गया है कि असली वैरागी कौन है, असली विरक्त कौन है। केवल जिसने घर बार छोड़कर गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है वही विरक्त नहीं है, वही वैरागी नहीं है। एक बार एक साधु महात्मा वो एक राजा से मिलने गए तो राजा ने स्वागत किया, पाद पूजा की साधु महात्मा जी की और फिर अच्छे आसन पर बिठाकर राजा गुणगान करने लगा इनका। राजा कहने लगा कि अहो भाग्य मेरे कि आप जैसे विरक्त, आप जैसे महान वैरागी साधु आज मेरे राज महल में पहुंचे हैं। तो साधु कहता है, नहीं नहीं राजन, मैं कोई बहुत बड़ा विरक्त नहीं हूं। अरे भाई, आपकी तुलना में मेरा वैराग्य क्या है? तो राजा थोड़ा अचरज किया उसने, नहीं नहीं महाराज, आप वैरागी, आप विरक्त, आपका जीवन, आपने सब कुछ छोड़ दिया, सभी ऐशो आराम, सभी प्रकार के भोग आपने छोड़ दिए। तो साधु महात्मा कहता, नहीं, मैंने जो कुछ छोड़ा हो परंतु मैं आपके जैसा वैरागी नहीं हूं। तो दोनों के बीच में यह स्पर्धा शुरू हो गई। स्पर्धा क्या? राजा कह रहा है साधु से, आप वैरागी। साधु कहता है राजा से, नहीं, आप मुझसे बड़े वैरागी। तो दोनों में होड़ लग गई कि कौन किससे बड़ा वैरागी। तो अंत में राजा हार कर साधु से पूछता है कि महात्मा जी, एक चीज बताइए, आप मुझे क्यों बार बार इतना बड़ा वैरागी कह रहे हैं? अरे मैं यहां पर राज ठाट भाट में, इतनी सारी मेरी रानियां हैं, ऐशो आराम है, पैसा है, धन दौलत, क्या कुछ नहीं, मैंने कौन सा वैराग्य दिखाया? तो साधु महात्मा कहते हैं, अरे भाई, मैंने किसका वैराग्य किया है? एक परिवार, कुछ थोड़ा बहुत ऐशो आराम उस परिवार का, कुछ आराम, कुछ सुकून, केवल बस इन्हीं वस्तुओं का मैंने त्याग किया है। तो ये वस्तुएं हैं क्या? ये सब तुच्छ नगण्य वस्तुएं हैं। परंतु हे राजन, आपने इतना बड़ा त्याग किया है, आपने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को त्याग दिया है। तो जो इतने महान व्यक्ति को त्याग दे, वो सबसे बड़ा त्यागी हुआ कि नहीं? तो राजा समझ गए कि ये मेरा गुणगान नहीं कर रहे थे, मुझे सबक सिखा रहे थे। तो श्लोक में कहा गया है, युक्तम वैराग्यम उच्यते, कि युक्त वैराग्य क्या है? कि जब हम हर वस्तु को, हर व्यक्ति को और हर स्थिति को भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जाने, उसे कहते हैं असली वैराग्य। अनासक्तस्य विषयान, विषय वस्तु से अनासक्ति। जैसे कि महाराज कुलशेखर, उन्होंने एक सुंदर श्लोक में कहा है, आश्चर्यमेतद् हि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति, नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वन्यवाच कुहक पठन्ति। वो कहते हैं आश्चर्यम, अहो आश्चर्य, ये क्या आश्चर्य मैं देख रहा हूं इस मनुष्य समाज में, कि मनुष्य समाज जो असली सुधा है, अमृत है, उस अमृत का परित्याग कर विषम पिबंती, सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती। सुधा कहते हैं अमृत को। तो यहां पर वो अमृत की तुलना किससे कर रहे हैं? नामानि नारायण गोचराणी, भगवान श्री नारायण के जो नाम हैं उन नामों को, नामामृत को वो सुधा कह रहे हैं। तो कहते हैं कि कैसा आश्चर्य है कि इस मनुष्य समाज में मैं देख रहा हूं कि मनुष्य इस नामामृत सुधा को त्याग रहे हैं, और केवल त्यागे नहीं हैं बल्कि उसके बदले विषम पिबंती, विष का पान कर रहे हैं। अरे भाई, यदि अमृत को कोई त्याग दे तो उसे कहा जाएगा कि बहुत दुर्भागी व्यक्ति है कि अमृत उसके हाथ में था, अमृत उसके हाथ से जाता रहा। तो कोई व्यक्ति यदि अमृत से वंचित रह जाए तो उसे कोई कहेगा कि दुर्भागी व्यक्ति है। परंतु महाराज कुलशेखर कहते हैं कि केवल अमृत का, सुधा का, नामामृत का परित्याग नहीं किया बल्कि अपितु विषम पिबंती, इसके बदले में विष पी रहे हैं। अब संस्कृत भाषा में विष किसे कहते हैं? जहर को। एक और शब्द है संस्कृत भाषा का, उसे कहते हैं विषय। कोई जानता है विषय किसे कहते हैं? विषय वस्तु। हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, पंचेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा, स्पर्शेंद्रिय, ये जो पंच इंद्रिय है हमारी, इन सब के लिए एक एक विषय वस्तु है। आंखों के लिए विषय वस्तु कौन है? कोई अच्छा रूप। कानों के लिए विषय वस्तु मधुर ध्वनि। नासिका के लिए, हम सब नासिक में बैठे हैं, नासिका के लिए विषय वस्तु क्या है? बहुत अच्छी सुगंध सूंघते रहना, क्योंकि कलयुग में सब जगह दुर्गंध है, इसलिए लोगों को लगाना पड़ता है कृत्रिम तरीके से सुगंध। तो नासिक इंद्रिय के लिए सुगंध, ये विषय वस्तु। ये त्वक इंद्रिय, ये जो हमारी त्वचा है, इसके लिए विषय वस्तु क्या है? कोई अच्छी चीजों को स्पर्श करना, ये विषय वस्तु। तो ये रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि जो हैं, इन्हें विषय कहा गया है। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं श्रीपाद जीव गोस्वामी कि विष एक जगह पर और विषय दूसरी जगह पर। यहां पर विष जहर और यहां पर विषय वस्तु, इन दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन सी है? विषय विष से ज्यादा खतरनाक है? तो आप लोग सब मानते हैं कि विषय वस्तु विष से ज्यादा खतरनाक है कि नहीं? ये इसलिए कि विष, जहर किसी को शारीरिक रूप से ही मार सकता है। कोई व्यक्ति जब विष अंदर ले लेता है या कोई सर्प डस देता है, तो विष अंदर जब जला जाता है तो उस व्यक्ति का केवल शरीर अंत कर सकता है वो विष। बल्कि विषय वस्तु इतनी खतरनाक होती है कि किसी के आध्यात्मिक जीवन को खत्म कर सकती है विषय वस्तु, किसी को आध्यात्मिक पथ से च्युत करा सकती है विषय वस्तु। एक और कारण यह है कि विषय वस्तु को जब तक शारीरिक रूप से अंदर नहीं लिया जाए तब तक वो विष किसी व्यक्ति को मारता नहीं। जब जहर को पिया जाता है, जब शरीर के अंदर डाला जाता है, तब वो विष किसी व्यक्ति के शरीर को मारता है, केवल जहर की बोतल देखने से कोई व्यक्ति नहीं मरने वाला। खैर कलयुग में तो अंदर लेने से भी लोग नहीं मरते आजकल, उस जहर में भी मिलावट होती है। परंतु विषय वस्तु के ऊपर केवल ध्यान करने मात्र से, केवल ध्यान करने मात्र से व्यक्ति का पतन हो सकता है। और इसकी व्याख्या स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में करते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसाम संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः काम क्रोधोद्विजायते क्रोधोद्भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान इस श्लोक का अंत कर रहे हैं प्रणश्यति। प्रणश्यति का अर्थ क्या है? खत्म हो जाना। तो इस श्लोक का अंत है कि जीव खत्म होता है अपनी आध्यात्मिक स्थिति से, प्रणश्यति। कब? श्लोक की शुरुआत क्या है? ध्यायतो विषयान् पुंसाम, जब वो विषय वस्तु के ऊपर ध्यान करता है। केवल ध्यान करने मात्र से संगस्तेषु उपजायते, उसके संग से उपजायते किस वस्तु का जन्म होता है? कामः, काम वासना का जन्म होता है। जैसे कि कल हमने इसकी चर्चा की, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे निकटतम आया तारे झपटिया धरे। कि भोग वांछा कब पैदा होती है? कृष्ण भूलिया, जब हम कृष्ण को भूलते हैं तब भोग वांछा पैदा होती है। और यहां पर भगवान बता रहे हैं एक और तरीका है इस भोग वांछा को पैदा करने का, ध्यायतो विषयान् पुंसाम। जब हम विषय वस्तु पर ध्यान लगाते हैं तब हमारे अंदर ये काम वासना, भोग वासना उत्पन्न होती है। और तत्पश्चात, क्योंकि ये हमने देखा है और ये हमारा अनुभव है व्यक्तिगत रूप से, कि जब हम किसी विषय वस्तु का भोग करने जाते हैं तो क्या हम संतुष्ट होते हैं? क्या वो विषय वस्तु हमें संतुष्ट कर पाती है? अरे इस जिह्वा ने कितना कुछ खाया है बचपन से लेके अब तक, कितने कुंड बाल्टी भर भर के हमने खीर दाल जूस ये सब कुछ पी लिया, कितने साले पर्वतों का चावल हमने खा लिया है अब तक, मण भर सब्जियां मण भर मिठाइयां। यदि इन सब की गणना हम करें तो कितने होगी ये सब, ये जिह्वा ने खाया है चखा है। परंतु रोज सुबह जब हम उठते हैं तो जिह्वा ललचाती है, आज भी, अरे बचपन से लेके अब तक इतना खिलाया इस जिह्वा को, क्या ये जिह्वा संतुष्ट हुई? जिह्वा रे लालसा इति उति धाय शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। किस जिह्वा की लालसा से जब जीव इति उति धाय भागता रहता है और केवल अपने उदर और शिष्ण के परायण रहता है, कृष्ण नहीं पाए, कृष्ण को नहीं पा सकता। तो ये जिह्वा को इतना कुछ दिया, कभी संतुष्ट हुई? फिर से हर रोज हर क्षण कुछ न कुछ मांगती रहती है जिह्वा। इन आंखों ने कितने रूपों को देखा है। सुंदर सुंदर रूप बना बनाकर हम इन आंखों को ललचाना चाहते हैं। आजकल टीवी के प्रोग्रामों में कितने सारे चैनल हैं और कितने सारे प्रोग्राम हैं, और वहां पर क्या दिखाया जाता है, सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष। खैर आजकल तो विभत्स भी देखने के लिए लोग उतारू होते हैं, बहुत ही भयानक डरावने विभत्स ये सारे चेहरे, इन्हें देखने के लिए पैसा देकर लोग जाते हैं, डरावनी पिक्चरें, और पैसा देकर बैठते हैं और कुछ डरावना भयानक कुछ आ जाए तो आंख बंद कर लेते हैं। तो आंखों को ललचाने के लिए कितने सारे रूप मनुष्य समाज ने बना लिए हैं, परंतु क्या ये आंखें संतुष्ट हुई हैं? इसलिए तो हमने बिल्वमंगल ठाकुर का उदाहरण लिया था कि उन्होंने जब ये देखा कि ये आंखें जब भगवान का दर्शन नहीं कर पा रही, केवल भोग वस्तु विषय वस्तु के दर्शन के लिए उतारू हैं, तो नहीं चाहिए ये आंखें, अपने आप को उन्होंने अंधा बना लिया। मैं अंधा सही यदि मैं इन श्याम सुंदर की छवि को नहीं देख सकता। तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं, ये सारी इंद्रियां केवल ललचा रही हैं हर क्षण और विषय वस्तु और विषय वस्तु और विषय वस्तु। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ध्यान करने मात्र से उस जीव का पतन शुरू हो गया है। काम वासना उत्पन्न होती है और वो जब संतुष्ट नहीं होती तब वो क्रोध में परिणित होती है। क्रोधोद्भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो व्यक्ति सम्मोह, मोह आप जानते हैं, जब व्यक्ति भ्रमित हो जाता है तो मोह में गिरता है। सम्मोह का अर्थ है सम्यक रूपेण मोहित, कि वो जब सम्यक रूप से मोहित होता है, भ्रमित होता है, तो भगवान कहते हैं सम्मोह, और उसका कारण क्या है, क्रोध। और उस भ्रमित अवस्था में स्मृति भ्रमसात, जब व्यक्ति क्रोधी होता है तो वह अपनी स्मृति खो बैठता है। स्मृति हमारे अंदर भगवान ने दी है ताकि हम उस स्मृति का इस्तेमाल कर ये पहचान ले क्या सही है क्या गलत है। परंतु जब कोई व्यक्ति क्रोध अवस्था में रहता है तो वो स्मृति खो बैठता है, इसलिए वो पहचान नहीं पाता कि वो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, स्मृति भ्रमसात। और जब स्मृति नाश हो जाती है इस व्यक्ति की, बुद्धि नाश उसके पश्चात, स्मृति भ्रमसात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तत्पश्चात उसका पतन निश्चित। तो विष और विषय में ज्यादा खतरनाक है विषय, इसलिए महाराज कुलशेखर वो ये आश्चर्य कर रहे हैं, वो आश्चर्य देख रहे हैं कि मैं क्या देख रहा हूं, कि मनुष्य समाज भगवान के इस नामामृत को छोड़कर विषम पिबंती, और विशेष रूप से कौन सा विष, विषय वस्तु भोग वांछा काम वासना, इसका विष पी रही है मनुष्य समाज। तो सुखदेव गोस्वामी यहां पर जैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और यशोदा का स्मरण किया, तो स्मरण करने मात्र से सारी दामोदर लीला उनकी आंखों के सामने, उनकी आंखों के सामने दामोदर लीला होने लगी। और इसलिए केवल इस श्लोक को सुनने के पश्चात नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् महाभाग च यशोदा, केवल नंद और यशोदा के बारे में सुनने मात्र से सुखदेव गोस्वामी अब दामोदर लीला सुनाने जाने वाले हैं। ये दामोदर लीला इतनी मधुर है कि वैष्णवगण इस दामोदर लीला का गुणगान पूरा एक महीना करते हैं कार्तिक के सुबह शाम। हम तो केवल दो दिन कर रहे हैं, पूरा महीना लगता है भगवान श्री दामोदर की लीला का गुणगान करने के लिए। पूरा महीना भी कम है, यदि पूरा जीवन हम लगा दें तब भी यदि इस दामोदर लीला के एक अंश को भी हम अपने जीवन में उसका साक्षात्कार कर पाए तो ये हमारा महाभाग होगा। तो भगवान ने जो मृद भक्षण लीला की तो मृद भक्षण लीला, इसके पश्चात हुई ये दामोदर लीला। तो मृद भक्षण लीला और दामोदर लीला क्या संबंध है इन दोनों लीलाओं में? हालांकि सुखदेव गोस्वामी तो परीक्षित महाराज के प्रश्न पूछने पर वो ये दामोदर लीला सुना रहे हैं, परंतु भगवान, उन्होंने जब मृद भक्षण लीला की तो उसके पश्चात भगवान ने जब दामोदर लीला की तो भगवान का अभिप्राय क्या था, भगवान क्या सोच रहे थे? हमने देखा कल कि इस दृश्य को भगवान ने माता यशोदा को दिखाया, क्या कि भगवान ने माटी खाई परंतु भगवान अपनी माता को विश्वरूप दिखाना चाहते थे। जैसे एक छोटा सा बालक जब कुछ अद्भुत कार्य करता है तो अपनी माता को सबसे पहले दिखाना चाहता है, मम्मी देखो मैंने क्या बनाया, मम्मी देखो मैं क्या लाया। हा? तो भगवान भी तुरंत अपनी मां को, मैया यशोदा को दिखा रहे हैं कि देखो मेरे मुख में क्या है। तो कल हमने सुना कि माता यशोदा ने जब अपने छोटे से कन्हैया के मुख में जब विश्वरूप देखा, सारे ब्रह्मांड, नक्षत्र, सारे तारे, सूर्य, चंद्र, स्वयं अपने आप को देखा, तो माता यशोदा वो सोचने लगी, कुमति से गतिम, क्या मेरे अंदर ये कुमति आ गई है कि मैं सोच रही थी कि मैं इस छोटे से कन्हैया की मां हूं। तो माता यशोदा वो कुछ समय के लिए भ्रमित हो गई, वो अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी कि मैं इस कन्हैया की मां हूं, अपितु वो सोच रही थी कि ये स्वयं भगवान है शायद। तो माता यशोदा कह रही थी कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परंतु भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे, भगवान श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि माता यशोदा उन्हें भगवान कहकर पुकारे। अरे सारा वैकुंठ, सारी दुनिया भगवान को भगवान कहकर पुकार रही है, परंतु अब वो माता यशोदा के पुत्र बनकर आए हैं, वो अपनी माता को भगवान नहीं कहलवाना चाहते थे। इसलिए भगवान जब वृंदावन में अपनी लीला करते हैं तो भगवान जानबूझकर योग माया का पर्दा डालकर रखते हैं ताकि वहां पर ब्रजवासी विशेष रूप से वो भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को नहीं जान पाए। कृष्णेन न व्रज जन किल मोहितास्ते
तैस व्यमोहि भगवान इति सत्यमेव गत्वा मयैव सहि विस्मृत देव कार्यो नुस्मारिति किमिति कृत्य न हो कथंचित।
श्रीपाद सनातन गोस्वामी इस सुंदर श्लोक में कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने वृंदावन लीला उन्होंने शुरू की, कृष्णे न व्रज जन किल मोहितास्ते। हालांकि भगवान ने पूतना का उद्धार किया जब वो केवल 6 दिन के थे, भगवान ने शकटासुर का वध किया जब वो केवल 3 महीने के थे, भगवान ने तृणावर्त इतने बड़े असुर का वध किया जब वो केवल 1 वर्ष के थे। ये सारा ऐश्वर्य ब्रजवासी गण देख रहे थे भगवान का। तो भगवान अपना ऐश्वर्य थोड़ा बहुत दिखा रहे थे, परंतु वो मोहित नहीं हुए ब्रजवासी गण। न व्रज जन मोहिता, वो बिल्कुल भी मोहित नहीं हुए भगवान के ऐश्वर्य को देखकर। बल्कि उल्टे हुआ यह कि वो भगवान, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, उन्होंने जब ब्रजवासियों का प्रेम देखा तो वो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान वो भ्रमित हो गए। गत्वा मयैव सही विस्मृत देव कार्यो, इतना भ्रमित हो गए भगवान, विस्मृत देव कार्यो, अपना देव कार्य भूल गए। देव कार्य क्या है कि उन्हें वृंदावन से बाहर निकलकर कंस की हत्या करनी है, कंस का उद्धार करना है और दुर्योधन पार्टी इन सब का, तो भगवान भूल गए। ब्रजवासियों के बीच भगवान इतना रम गए उनके प्रेम में कि नारद मुनि को आना पड़ा। जब भगवान ने केशी का वध किया तो भगवान उसके पश्चात जो उनका शेड्यूल था उसके अनुसार भगवान को बाहर जाना था, वृंदावन के बाहर, तो नारद मुनि ने आकर भगवान को याद दिलाया अब थोड़ा वृंदावन से बाहर निकलिए, इतना लंबा लिस्ट बाकी है असुरों का, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, कंस इत्यादि। तो नारद मुनि लिस्ट लेकर आए और नारद मुनि ने याद दिलाया भगवान को कि आप भूल चुके हो, मैं जानता हूं ये ब्रजवासियों के प्रेम में कौन भूलेगा नहीं सारे संसार को। विस्मृत देव कार्यो, देखिए ब्रजवासियों का प्रेम। श्रीपाद रूप गोस्वामी एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत से भक्त हुए, मथुरावासी, द्वारकावासी, कितने सारे भक्त हुए भगवान के, परंतु इन सभी भक्तों में से जो ब्रजवासी भक्त हुए वो सर्वोपरि थे और उनका प्रेम सर्वोपरि प्रेम था। ये कैसे हम समझे, एक सुंदर उदाहरण रूप गोस्वामी देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही सुंदर पात्र, एक पीतल का चमचमाता हुआ सुंदर पात्र, और उस पात्र में किसी ने बहुत ही चमचमाता हुआ हीरा रखा हो, पीतल के पात्र में चमकता हुआ हीरा, तो यदि कोई व्यक्ति उस हीरे को देखेगा उस पीतल के पात्र में तो उसकी चमक और उठकर दिखेगी। अब यदि कोई व्यक्ति उस पात्र में उस हीरे के ऊपर घी डाल दे, क्या डाल दे, घी डाल दे, और यदि वो घी जम जाए, सर्दी के मौसम में घी जम जाता है ना, तो यदि वो घी जम जाए, गाढ़ा हो जाए, तो अब क्या वो सतह पर जो हीरा है क्या वो दिखाई देगा, क्यों नहीं? क्योंकि घी जम चुका है, घी गाढ़ा हो चुका है, तो गाढ़े घी के वजह से अब वो चमचमाता हीरा नहीं दिखाई देगा। तो हीरे की तुलना की गई है भगवान के ऐश्वर्य से। भगवान ने जो कल हमने 6 ऐश्वर्य लिए, भगवान जो 6 ऐश्वर्य पूर्ण हैं, तो भगवान अपने ऐश्वर्यों को जो दिखाए उन ऐश्वर्यों की तुलना उस हीरे से की गई है। तो अब यदि इसी उदाहरण को हम फिर से लें, वो हीरा उस पीतल के पात्र के सतह में और उसके ऊपर गाढ़ा घी, तो यदि अभी आपको वो हीरा देखना है तो कैसे देख पाओगे? उस घी को पिघलाना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा। जब घी को पिघलाओगे तो पिघले हुए घी में तुरंत वो नीचे हीरा दिख पड़ेगा। तो ये उदाहरण दिया गया है कि ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो गाढ़े घी के समान है, भगवान का ऐश्वर्य नीचे छिप जाता है। है ऐश्वर्य है, परंतु उन्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके और भगवान के ऐश्वर्य के बीच में गाढ़ा घी है। वो गाढ़ा प्रेम, इसलिए जब भगवान ने अपना ऐश्वर्य इन सबको दिखाया तो ब्रजवासी गण इन ऐश्वर्यों से वो इतने प्रभावित नहीं रहे। परंतु अर्जुन को जब विश्वरूप दिखाया तो अर्जुन का घी पिघल गया। अर्जुन ने जब विश्वरूप देखा तो अर्जुन फिर क्षमा मांगने लगा, हे भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं चारों तरफ से आपको दंडवत देता हूं, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, सब जगह से दंडवत। मैं आपके साथ सोया करता था, खाया करता था, हंसी मजाक किया करता था। कई बार अर्जुन भगवान को हे कृष्णा ऐसे कर पुकारते थे। कृष्णा का एक और अर्थ है वो जो काला है। तो मानो अर्जुन भगवान को पुकारते थे हे कालिया। अर्जुन ये सब कुछ याद कर रहे थे विश्वरूप को देखते हुए, नहीं क्षमा कर दो हे भगवान। तो अर्जुन का घी पिघल गया। परंतु ब्रजवासियों ने जब ऐश्वर्य देखा भगवान का, तो ब्रजवासियों की स्थिति क्या थी? एक घटना ऐसी है कि भगवान रोज, जैसे हमने चर्चा की, सखाओं के साथ कहां जाया करते थे? गोचारण। जमुना तट पर धेनु चराए माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। जमुना तट पर धेनु चराए माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। गौर हरि। मधुर मुरलिया जब वो बजाए हरले सुद बुद्ध सारी, हरले सुद बुद्ध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है।
गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। ए जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय जय श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
तो भगवान रोज यमुना के तट पर अपने सखाओं के साथ गोचारण लीला किया करते। तो एक दिन भगवान श्रीदामा को कहते हैं, श्रीदामा तुम रोज यहां पर आकर मुझसे कुश्ती लड़ते हो। अरे तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्या तुमने थोड़ी भी कल्पना की कभी कि मैं कौन हूं? क्योंकि उस दिन श्रीदामा तैयार हुए कृष्ण से कुश्ती लड़ने के लिए। तो जब तैयार हुए कृष्ण से कुश्ती लड़ने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अब श्रीदामा से कहते हैं, श्रीदामा तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, पहले जान लो, पहले मेरा परिचय जान लो। और भगवान ने अपना बायोडेटा दिखाया, भगवान ने श्रीदामा को कहा, श्रीदामा सुनो मैं कौन हूं। श्रीदामा ने कहा अच्छा। श्रीदामा ने सबको बुलाया, आओ आओ थोड़ा, ये सुना रहा है कौन है, ये सुनाओ कौन हो। तो भगवान ने कहा मैं पूतना घाटन, पूतना निषूदन, मैंने पूतना का वध किया, पूतना का उद्धार किया जब मैं केवल 6 दिन का था। श्रीदामा भूल गए, अरे सारे ब्रजमंडल में खबर फैली थी इस पूतना का वध किया किसने। श्रीदामा पेट पकड़कर हंसने लगा, ये इसने पूतना का वध किया, सुनो 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 और पास आओ, देखो क्या सुना रहा है। तो भगवान अब सबकी तरफ देखे और कोई विश्वास नहीं कर रहा था। तो भगवान ने कहा तुम लोग विश्वास नहीं कर रहे, तुम लोग विश्वास नहीं कर रहे मैंने पूतना का वध किया। श्रीदामा ने कहा कि आगे कहो और क्या क्या किया बताओ। तो भगवान ने कहा अरे अरे उस अघासुर, वो इतना बड़ा सर्प, वो अघासुर आया 12 मील लंबा, अरे तुम लोग मूर्छित मर गए थे, तुम्हें जिलाया पहले, फिर उस अघासुर का उद्धार मैंने किया। सभी और हंसने लगे, अघासुर का उद्धार किया, सुना क्या? श्रीदामा सबको पूछ रहे हैं, सुना और बताओ और क्या तुम्हारा पराक्रम। तो भगवान कहते हैं हद हो गई, अरे ये सब कुछ मुझे बताना पड़ रहा है तुम्हें। फिर भगवान ने कहा और जो गोवर्धन धारण मैंने किया इस उंगली पर 7 दिन 7 रात जो गोवर्धन धारण किया, तुम लोग सब नीचे, अरे वो संवर्तक बादल मारने आए थे तुम लोगों को, बाढ़ में डूब कर मर जाते तुम सब यदि मैं वो गोवर्धन धारण नहीं करता। अरे क्या भूल गए, अरे फोटो नहीं खींची थी? तो श्रीदामा और सभी गोप सखा और जोर जोर से हंसने लगे। तो भगवान अब पूछने लगे श्रीदामा से, श्रीदामा बताओ तो मैंने ये सब कुछ जो किया तुम्हारे अनुसार क्या था वो? तो सिरदामा कहते हैं, बैठो बैठो मैं बताता हूं। अब सारा कच्चा चिट्ठा होगा सामने, पुतना उद्धार, अघासुर उद्धार, गोवर्धन धारण, ये तीन दृष्टांत दिए ना, बताता हूं। अरे पूतना जब वो इतनी बड़ी विकराल स्वरूप में आई तो माता यशोदा ने तुरंत ब्राह्मणों को लगा दिया मंत्रोच्चारण करने के लिए, तो सारे शुद्ध ब्रजवासी ब्राह्मण जब मंत्रोच्चारण कर रहे थे तो उनके मंत्रों की शक्ति से पूतना मरी। और ये महाशय बोलते हैं इन्होंने किया, ये असलियत है। तो भगवान कलयुग शायद अभी आ गया, तो भगवान अब क्या कहे? सभी गोपगण कहते हैं हाँ सही बात है। ओ ब्राह्मण, अरे 6 दिन का बालक क्या करेगा? अरे तुम तो रोज श्रीदामा से हारते हो कुश्ती में, क्या पुतना को मारोगे वो भी 6 दिन के? तो भगवान, और अघासुर? अरे अघासुर सभी तुम लोगों ने देखा भाई, मैं तुम अघासुर के अंदर गया तुम्हें बचाने के लिए। तो श्रीदामा कहता है सुनो, अघासुर की जो कथा उसकी असलियत मैं बताता हूं। वो अघासुर के मुख में हम लोग पहले गए। कौन पहले गया? हम सब पहले गए थे और हमने पहले ही उसका काम तमाम कर दिया था, और तुम घुसकर जो कुछ बाकी रह गया था फिर अपना नाम ले लिया, अपने नाम पे सर्टिफिकेट फाड़ लिया। तो भगवान कहे हद हो गई। तो भगवान ने पूछा, अच्छा अब गोवर्धन धारण लीला का भी बता दो, क्या तुम्हारे अनुसार वो लीला कैसे हुई? हाँ वो भी बताते हैं। वो गोवर्धन की पूजा हमने पहले की थी, जब हमने गोवर्धन की पूजा की तो श्री गोवर्धन भाव विभोर होकर इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए गोवर्धन की, वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, इसलिए वो उछल पड़े। गोवर्धन उछल पड़े और वो हवा में आकाश में उछले हुए थे और नीचे जाकर उंगली लगा दी तुमने। तो ये ब्रजवासियों का प्रेम, वो भगवान के ऐश्वर्य को नहीं देख पा रहे थे। क्यों? गाढ़ा माखन बीच में जो था। तो इसलिए इस लीला में हमने देखा कि भगवान उस गाढ़े प्रेम रस को बरकरार रखना चाहते थे। भगवान नहीं चाहते थे कि इस गाढ़े प्रेम रस को कोई पिघलाए। तो भगवान ने मृद भक्षण लीला में अपना ऐसा ऐश्वर्य दिखाया कि थोड़े समय के लिए माता यशोदा, कृष्ण ने देखा कि माता यशोदा का घी पिघल रहा है, कि माता यशोदा अब मेरी भगवत्ता पहचानने लगी है। तो भगवान ने फिर सोचा नहीं 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 नहीं, ये तो रंग में भंग हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर हम देखते हैं भगवान अपना विश्वरूप अपने मुख में माता को दिखा रहे हैं। इसके तुरंत पश्चात ये लीला हुई, उल्टे उन्हीं विश्वरूप को बंदी बनाया है अब माता यशोदा ने इस दामोदर लीला में। एक और व्यक्ति था जिसने विश्वरूप को बंदी बनाने का प्रयास किया, दुर्योधन। और यहां माता यशोदा विश्वरूप देखने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग माया का पर्दा डाला, तो माता यशोदा भूल गई कि यही वो बालक जिसने विश्वरूप दिखाया और मैं इसी बालक को बांधने का प्रयास कर रही हूं। तो मृद भक्षण लीला और दामोदर लीला, इसका संबंध क्या है कि भगवान तुरंत अपना ऐश्वर्य दूर करना चाहते थे इस लीला के द्वारा, दामोदर लीला के द्वारा, जो उन्होंने ऐश्वर्य मृद भक्षण लीला में दिखाया। भगवान अब अपने ऐश्वर्यों का परित्याग करना चाहते थे माता यशोदा के गाढ़े प्रेम को बरकरार रखने के लिए। तो भगवान ने क्या किया, अब इस दामोदर लीला की शुरुआत करने के लिए भगवान ने सबसे पहले माखन चोरी की लीला शुरू की। भगवान अब अपने सखाओं के साथ अलग अलग घरों में जाकर माखन चोरी किया करते थे। चुरा चुरा नवनीत जखायो, व्रज वदितन पाए नाम धरायो। अरे माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम, माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम, केशव कलिमल हरि राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए केशव कलिमल हरि राधे श्याम श्याम श्याम, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। चुरा चुरा नवनीत जो खायो, माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम। हमने सुना भगवान प्रसिद्ध हुए जब उन्होंने माखन की चोरी शुरू की। भगवान का नाम प्रसिद्ध हुआ, माखन चोर, ये नाम प्रसिद्ध हुआ। तो भगवान अब अपने सखाओं के साथ अलग अलग गोपियों के घर जाकर भगवान माखन चोरी किया करते थे। तो ये गोपियां अब माता यशोदा के पास आती और शिकायत करती कि ये क्या हो रहा है, 9 लाख गायें हैं तुम्हारे पास, इतना दूध इतना दही इतना माखन बनता है, ये तुम्हारा लाला रोज हमारे घर आकर चोरी करता है, उत्पात मचाता है। तो माता यशोदा वो कभी विश्वास नहीं करती थी, माता यशोदा कभी विश्वास नहीं करती थी कि उसका कन्हैया ये सब कार्य कर रहा है। तो अब ये सारी गोपियां एक दिन एक साथ आई और इन्होंने एक मीटिंग बिठाई, इष्ट गोष्ठी। और उस मीटिंग में चर्चा यही कर रही हैं कि ये रोज कृष्ण अपनी पार्टी के साथ, ये गोप के साथ आता है और हर दिन किसी न किसी घर पर धावा बोलता है। तो ये कृष्ण को सबक सिखाना होगा। तो अन्य गोपियों ने पूछा, भाई सबक सिखाएं कैसे, ना तो हम पकड़ पाते हैं, जाकर यशोदा माई को शिकायत करते हैं तो उसे विश्वास नहीं होता, तो करें तो क्या करें, चोरी तो हो रही है सब जानते हैं, पूरा ब्रजमंडल जाता है कि एकमात्र चोर कौन है। तो चोरी तो हो रही है, सब जानते हैं कौन चोरी कर रहा है, परंतु माता यशोदा विश्वास नहीं करती जो दंडित कर सकती है, और हम कैसे दंडित करें, कोई सबूत नहीं। तो एक गोपी ने कहा कि यदि माता यशोदा को विश्वास हमें दिलाना है तो हमें इस कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ना होगा। कैसे रंगे हाथ? कि हमारे घर का माखन और कृष्ण की हथेली, कृष्ण की हथेली में हमारे घर का माखन, ऐसे जब ले जाएंगे यशोदा के सामने, दिखाएंगे कि अब देखो इसे लेबोरेटरी में चेक कर लो, ये माखन तुम्हारे घर का नहीं, ये हमारे घर का है, परंतु ये हाथ ये तुम्हारे घर का है। तब जाकर इस यशोदा को विश्वास होगा। परंतु अब समस्या ये आ खड़ी हुई कि रंगे हाथ पकड़े कैसे? अरे ये इतना चतुर है कृष्ण, और सारे सखा इतने चतुर हैं, इतने चुस्त हैं कि ये कब आते हैं, कब चोरी करते हैं, कैसे भाग जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो कैसे पकड़ा जाए, रंगे हाथ कैसे पकड़ा जाए, इसके विषय में चर्चा होने लगी अब उस मीटिंग में। तो एक गोपी ने कहा, हाँ मुझे अब समझ में आ गया कि रंगे हाथ अब कैसे पकड़ेंगे इन्हें। तो तरीका बताया कि ये लोग हमारे घरों में घुसते कहां से? खिड़कियों से, द्वार से तो अंदर आते नहीं, बेल मारकर खटखटाकर तो अंदर आते नहीं, हम आ रहे हैं चोरी करने, खोलो सब तैयार रखना। ये घुसते हैं हमारी खिड़कियों से, और ऐसे समय घुसते हैं जब हम वहां पर सचेत नहीं रहते। तो करना यह है कि हमारी सबके घरों की खिड़कियों पर घंटियां बांध दी जाए। क्या घंटियां? छोटी छोटी घंटियां, अंग्रेजी में इसे कहते हैं बर्गलर अलार्म, चोरों के लिए जो घंटियां। तो इस चोर को पकड़ने के लिए खिड़की के चारों तरफ घंटियां बांध दी जाए। परंतु दूसरी गोपी ने कहा, नहीं नहीं, यदि खिड़कियों पे हम घंटियां बांध देंगे तो जब ये लोग खिड़की से अंदर कूदते हैं तो घंटियां बजेंगी, और जब घंटियां बजेंगी तो हम सब भागकर वहां पर पहुंच जाएंगे, तो ये लोग चले जाएंगे, तो माखन हाथ में कैसे आएगा इनके? तो निर्णय ये हुआ था कि हमारे घर का माखन कृष्ण की हथेली, इसे कहते हैं रंगे हाथ या माखन हाथ। तो दूसरी गोपी ने कहा, ठीक है खिड़कियों पर तो हम घंटी बांध देंगे, परंतु जब ये लोग खिड़की से प्रवेश करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, घंटियां जब बजेंगी, कि प्रवेश चोर ने कर दिया है। तो जब ये लोग प्रवेश करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, घंटियां जब बजेंगी तो हम तैयार रहेंगे तब। और फिर जो माखन का मटका है छींके से टंगा हुआ, तो छींके से चारों तरफ घंटियां, मटके के चारों तरफ घंटियां, ताकि जब ये लोग, और ये लोग चोरी किया कैसे करते थे ये देखिए, ऐसे चोरी हुआ करती थी, ऊपर चढ़कर शायद उसी के समय का फोटो होगा ये, जब रंगे हाथ पकड़े गए थे। तो ऊपर चढ़कर इस प्रकार से उखल को लेकर या श्रीदामा या बलराम इनके कंधे पर भगवान चढ़कर, तो छींके पर मटके के चारों तरफ घंटियां, खिड़की के चारों तरफ घंटियां। तो जब छींका हिलेगा, मटका नीचे उतरेगा, सारी घंटियां बजेगी, और जब माखन निकाला जाएगा तब जाकर रंगे हाथ पकड़ना है। तो अब ये प्रस्ताव पास हुआ कि सभी के घरों में घंटियां। तो अगले दिन अब सभी के घरों की खिड़कियों के ऊपर घंटियां, छीके के चारों तरफ घंटियां, मटके के चारों तरफ घंटियां, घंटियां, वृंदावन के मार्केट की सारी घंटियां खत्म हो गई। तो अब भगवान सुबह सुबह अगले दिन अपने गैंग अपनी पार्टी के साथ निकले। तो निकले तो एक गोपी का नाम प्रभावती। इस प्रभावती गोपी के घर पे आज डकैती होने वाली थी। तो पिछली रात को ही उसका घर नियुक्त कर लिया था इन्होंने कि इस गोपी के घर में डकैती होगी। तो जैसे ही ये लोग अब उस घर की खिड़की की तरफ पहुंचे, और सबसे पहले भगवान वही पहल करते थे, वही कूदते थे, और वही सब कुछ लीडर थे भाई, मुखिया थे चोरों की गैंग के। तो जैसे ही भगवान अब खिड़की से, इस प्रभावती गोपी के घर की खिड़की से कूदने वाले थे, तो मधुमंगल, मधुमंगल कौन है? मधुमंगल ये ब्राह्मण सखा है भगवान के। तो मधुमंगल जो कि लड्डू के बहुत प्रेमी हैं, ब्राह्मण भोजन प्रिय, तो मधुमंगल ये बहुत इनको प्रिय है, विशेष रूप से लड्डू भोजन। तो मधुमंगल और ब्राह्मण जो हैं वो बहुत चतुर होते हैं, बुद्धि उनकी बहुत चलती है। तो मधुमंगल ने भगवान को रोक दिया, ए कान्हा रुको 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 रुको, आज तो यहां पर कुछ गड़बड़ है। तो कान्हा ने कहा, गड़बड़ क्या है भाई, वही वृंदावन, वही सारे घर, और इस प्रभावती गोपी के घर तो कितनी बार हमने डकैती की है, तो यहां पर गड़बड़ क्या है? मधुमंगल ने कहा, देखो आज कुछ अलग है, खिड़कियों के चारों तरफ देखो घंटियां, छोटी छोटी घंटियां बांधी हुई है, ये किसी के घर में हमने नहीं देखी, कल तक ये घंटियां नहीं थी। तो भगवान ने कहा, अरे हमारे स्वागत के लिए लगाई होगी, अच्छा है, ये लोग अब पहचान रहे हैं कि माखन किस लिए निकालना चाहिए। तो मधुमंगल ने कहा, अरे मूर्ख, माखन खा खा कर तुम्हारी बुद्धि मोटी हो गई, ये हमारे हमें पकड़ने के लिए घंटियां लगाई गई है। तो भगवान ने कहा, मधुमंगल, अरे घंटियों से वो हमें कैसे पकड़ेंगे? तो मधुमंगल ने कहा, मैं बताता हूं, तुम जब कूदोगे ना तो तुम ये घंटियों को स्पर्श करोगे और ये घंटियां बजेंगी, ये घंटियां बजेंगी तो वो अंदर खड़ी होगी छड़ी लेकर तुम्हें मारने के लिए, पकड़ने के लिए। तो भगवान ने कहा, मधुमंगल तुमने अब तक मुझे पहचाना नहीं, अरे सारी दुनिया जानती है मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, मेरी आज्ञा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, ये घंटियों की मजाल कि मेरी आज्ञा के बिना ये हिले। मधुमंगल ने कहा, क्या तुम्हारी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता? मधुमंगल ने देखा एक पेड़ पर सारे पत्ते हिल रहे थे, वो क्या है? तो भगवान ने कहा, मैंने ही आज्ञा दी थी उन्हें अभी थोड़े समय पहले। तो मधुमंगल ने कहा ठीक है थोड़ा दो, इन घंटियों को आज्ञा दो, तुम्हारी देखते हैं आज्ञा कितनी काम करती है, दो आज्ञा दो। तो भगवान अब थोड़ी गहरी आवाज में बोले, हे घंटियां, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तुम्हें आज आदेश दे रहा हूं, अभी मैं कूदने वाला हूं, एक भी घंटी यदि बजी तो बजा के रख दूंगा। तो भगवान अब मधुमंगल की तरफ देखते हैं, हो गया चलो। मधुमंगल नहीं नहीं, पहले तुम जाओ देखते हैं आदेश काम करता है कि नहीं। तो मधुमंगल सबसे कहते, सब पीछे खड़े रहना थोड़ा, ये फंसेगा हमको फंसाएगा। तो सभी थोड़ा पीछे हट गए। भगवान अकेले, अरे तुम्हें विश्वास नहीं, मैंने आज्ञा दे दी, आदेश दे दिया है, एक भी घंटी नहीं हिलने वाली। तो मधुमंगल ने कहा ठीक है चलो चलो देखते हैं। तो भगवान अब अपना पैर ऊपर किए, खिड़की से अंदर कूदे, भगवान ने उन घंटियों को स्पर्श किया, घंटियां हिली और आवाज हुई कि नहीं हुई, आप लोग थे उधर? सारी घंटियां हिली परंतु आवाज बिल्कुल नहीं, एक भी घंटी से आवाज नहीं निकली। तो भगवान अंदर कूदने के पश्चात मधुमंगल से कहते हैं, देखा? मधुमंगल एक दूसरे से कहता है, दम है हमारे कान्हा में भी, कुछ दम है, चलो चलो ठीक है। तो मधुमंगल और बाकी सारे सखा कूदे, वो भी स्पर्श किए, एक भी घंटी नहीं बजी। अब वो अंदर पहुंचे, अंदर पहुंचकर जैसे यहां पर छीके से सब मटके लटकाए गए हैं, तो इन्होंने मटकों को देखा, और भगवान हर दिन जैसे चोरी किया करते थे वैसे उन्होंने अपना गोविंदा आला रे आला जो करते हैं उस प्रकार से। तो मधुमंगल ने फिर भगवान को संकेत के द्वारा बताया, देखो देखो देखो, रुक जाओ भाई, मत करो, यहां पर भी घंटियां, देखो आज तो कुछ दाल में काला, दाल ही काली है शायद, यहां पर भी ये छींके के ऊपर भी घंटियां, मटके के चारों तरफ घंटियां, सब तरफ घंटियां ही घंटियां हैं, मैं बोलता हूं भाग चलो, आज यहां पर खतरे से खाली हम नहीं। तो भगवान ने कहा, मधुमंगल अब तक तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, इतने बड़े नास्तिक हो तुम, अरे मैंने उधर आदेश दे दिया उन घंटियों को बजने न बजने के लिए, तो ये घंटियां। मधुमंगल ने कहा, नहीं ये दूसरी बिरादरी की घंटियां दिखती है, तुम इन्हें भी आदेश दो। तो भगवान ने फिर इन घंटियों को भी आदेश दिया, घंटियां मैं अब ऊपर चढ़कर मटका नीचे लेने वाला हूं, एक भी घंटी यदि इस मटके की बजी तो भगवान अब ऊपर चढ़े, मटके को पकड़ा, छींके से मटके को निकाला, छींका हिला, मटका हिला, घंटियां हिली और सही में एक भी घंटी से आवाज नहीं निकली। तो भगवान मधुमंगल की तरफ देखते हैं, मधुमंगल बहुत कुछ तुम्हें जानना है मेरे बारे में, तुम नौसिखिया हो, ये सब कुछ जान लो, क्या क्या मेरे अंदर ऐसे बहुत से गुण हैं मेरे अंदर। तो भगवान ने अब मटका नीचे उतारा और सभी लोग बैठे और भगवान अब अपना वर्द हस्त अपनी हथेली को मटके के अंदर भगवान ने डाला और अंदर से भगवान ने माखन अपनी हथेली के ऊपर लिया। भगवान की हथेली और माखन भगवान की हथेली के ऊपर, और अब भगवान उस माखन को खाने ही जाने वाले थे तो क्या हुआ? बजी कि नहीं? आप लोगों को कहानी मालूम है शायद। सारी घंटियां, खिड़की पर जो घंटियां थी, छीके पर जो घंटियां थी, मटके के ऊपर जो घंटियां थी, सारी घंटियां बजने लगी, जोर जोर से सारी घंटियां बजने लगी। और भगवान अब सब घंटियों की तरफ देख रहे हैं। मधुमंगल का मैंने कहा था इसका कुछ काम नहीं करता, ऐन समय पर ये धोखा देता है। और उसी समय जब घंटियां सारी बजने लगी तो प्रभावती गोपी ने सुनाए, घंटियों को सुना और तुरंत वो छड़ी लेकर वहां पर प्रकट हो गई। एक दिन ग्वाल न सब गोपनिया पकड़े शाम को, एक दिन ग्वालन सब गोपनिया पकड़े शाम को, एक दिन ग्वालन सब गोपनिया पकड़े शाम को, पकड़े शाम को लेकर आए शाम को, पकड़े शाम को लेकर आए शाम को, एक दिन ग्वालन सब गोपनिया पकड़े शाम को, एक दिन ग्वालन सब गोपनिया पकड़े शाम को। तुरंत प्रभावती गोपी ने भगवान का वो हस्त पकड़ लिया जिसमें माखन था, तुरंत इसका फोटो खींचो। पकड़ा गया आज ये पकड़ा गया। और भगवान अब कांपते हुए, तब तक बाकी सभी गोप रफू चक्कर 9-2-11 भाग गए और भगवान अकेले। तो जो उनकी योजना थी वो योजना सफल रही। प्रभावती गोपी के घर का माखन भगवान की हथेली के ऊपर। और अब प्रभावती ने कहा अब चलो और अब ये सब कुछ माता यशोदा तुम्हारी माता को दिखाएंगे, तब विश्वास होगा कि उसका सपूत क्या करतूत कर रहा है। तो भगवान अब कांपते हुए, थरथराते हुए, अपनी कांपती हुई आवाज में प्रभावती से कहते हैं मुझे क्षमा कर दो, फिर से ये गलती नहीं। अरे पहली बार तो पकड़ा है, मैं फिर से ये गलती नहीं करूंगी तुम्हें छोड़ने की। तो भगवान ने कहा ठीक है, जहां भी ले जाना है, जो भी दंड देना है, ठीक है दे दो, परंतु ले जाने से पहले थोड़ा मैं ये घंटियों से बात कर लूं, थोड़ा इनसे पूछ लूं कि क्या हुआ। तो प्रभाव घंटियों से क्या पूछना हो, तो हमने लगाई थी। अरे उनका काम था बजना हो तो बजी। तो भगवान ने कहा दो मिनट थोड़ा रुको। तो भगवान ने अब घंटियों को पुकारा, घंटियां सारी घंटियां मेरे सामने पेश हो। तो मूर्तिमान घंटियां अब थरथराती हुई बजती हुई मूर्तिमान घंटियां भगवान के सामने प्रकट हुई। तो भगवान ने अब एक घंटियों को पूछा तुम सबको मैंने आदेश दिया था एक भी घंटी बजना मत, क्या सुनाई नहीं दिया तुम्हें वो आदेश? क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? अरे एक पत्ता भी नहीं हिलता मेरी आज्ञा के बिना, और तुम लोगों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। तो मूर्तिमान घंटियों की जो मुखिया थी वो सामने आई और उसने भगवान से कहा, हम क्षमा चाहते हैं, हम तो आपकी ही आज्ञा का पालन कर रहे थे। मेरी आज्ञा का पालन ऐसे किया? मैंने जब कहा बजना मत, सारी घंटियां उस समय बजने लगी जब नहीं बजना था तुम्हें। ये कौन से आदेश का पालन किया तुमने? तो घंटियां कहती हैं, भगवान आप ही के आदेश। मेरे आदेश का? मैंने कौन सा आदेश दिया तुम्हें बजने के लिए? तो घंटी ने कहा, आप जब खिड़की से अंदर कूदे उससे पहले आपने आदेश दिया बजना मत, हम नहीं बजे। हाँ ठीक है, नहीं बजी। आप जब मटका नीचे उतारने वाले थे उससे पहले आपने आदेश दिया बजना मत, हम नहीं बजी। हाँ ठीक है, उसके बाद क्यों बजी फिर? तो घंटियों ने कहा कि भगवान आप ही का आदेश है। शास्त्रों में आप ही ने कहा है कि जब भी भगवान को भोग चढ़ता है तो पुजारी क्या करता है? घंटी बजाकर भोग चढ़ाता है। तो हमने देखा कि आपने मटका उतार लिया, हम चुप रहीं। इससे पहले आप कूदे, हम चुप रहीं। और आपने अपना हाथ अंदर डाल दिया, माखन बाहर निकाल लिया, तब तक हम चुप रहीं। अरे भैया, भोग चढ़ने वाला था, नैवेद्य लगने ही वाला था, हमने देखा कोई पुजारी नहीं, घंटी बजाने के लिए कोई पुजारी नहीं, तो हमने सोचा हम ही बज देते। तो आप ही का आदेश है कि जब भी आपको भोग चढ़ता है तो घंटियां अवश्य बजती। तो भगवान अब हंसने लगे। प्रभावती ने कहा, हो गया, ठीक है, चलो चलो चलो। तो प्रभावती कष्टा पकड़कर ले जा रही है अब भगवान को कहां? नंद भवन, माता यशोदा को दिखाने के लिए। तो रास्ते में भगवान क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, गलती हुई फिर से नहीं, कुछ नहीं, कोई क्षमा नहीं, यहां पर कोई दया नहीं होगी अब तुम्हारे ऊपर। तो भगवान जैसे ही अब नंद भवन के निकट पहुंच रहे थे, प्रभावती ले जा रही थी, तो भगवान ने अब थोड़ी गहरी आवाज में कहा, प्रभावती छोड़ दो, नहीं तो एक तो गलती, एक तो चोरी, ऊपर से एक तो गलती की, चोरी की, ऊपर से धमकी, नहीं तो क्या, नहीं तो अब देखना, नहीं तो क्या होगा। तो भगवान अब नंद भवन के सामने प्रभावती पुकार रही है, ए यशोदा बाहर आओ देखो। तो भगवान कहते, अभी भी समय है प्रभावती, छोड़ दो नहीं तो, हाँ देखते हैं नहीं तो अब क्या होगा। तो प्रभावती ने किया क्या कि भगवान को अपने आंचल से ढक दिया। प्रभावती सरप्राइज देना चाहती थी माता यशोदा को। तो माता यशोदा बाहर आई तो प्रभावती गोपी माता यशोदा को कहती है, इतने समय तक हम आकर शिकायत कर रही थी तुम्हारे कान्हा के विषय में, आकर चोरी करता है, उपद्रव करता है, उत्पात मचाता है, कभी तुमने विश्वास नहीं किया। आज देख लो, अपने ही इन आंखों से देख लो, तुम्हारा ये लाला उसके हथेली में मेरे घर का माखन आंचल निकाला प्रभावती ने, देखो। तो माता यशोदा प्रभावती को देखकर हंसने लगी। प्रभावती, मैं जानती थी कि तुम लोग सब मेरे लाला को सब जगह पर देखते हो, परंतु ये क्या कि तुम अपने ही पुत्र को लेकर आई, अपने ही बेटे को पकड़े हुए हैं और अपने ही घर का माखन उसके हथेली पे लगाकर मुझे बता रहे हो कि मेरे कान्हा ने चोरी की। प्रभावती ने नीचे देखा तो क्या हुआ, भगवान ने अपने आप को उस प्रभावती के पुत्र में परिवर्तित कर लिया था। तो माता यशोदा अब कहती है, जाओ जाओ, बेचारा भूखा होगा, जाके माखन खिलाओ, यदि नहीं है तो मेरे घर पर आ जाओ, बहुत माखन है, थोड़ा ले जाना, जाओ जाओ जाओ। अब ये क्या कहे प्रभावती, बेवाक ये प्रभावती अब भगवान को पकड़े और सोचे कि ये मेरा पुत्र फिर से अपने घर ले जा रहे, और रास्ते में उसे दो चट्टू लगाकर, अरे निखट्टू तू कहां से आया, अरे उसको पकड़ा था वो कृष्ण को, वो कहां गया। तो जैसे ही नंद भवन से थोड़ा आगे प्रभावती भगवान को पकड़े पकड़े डांटे डांटे ले जा रही थी, तो फिर से भगवान अब अपने निज रूप में आ गए। ये मायावी कृष्ण, तू अपनी माया से मुझे दंडित करवा रहा है, अब फिर से चल, अब बताती हूं माता यशोदा को कि ये तुम्हारा चोर ही नहीं है पुत्र, बल्कि मायावी चोर है। तो भगवान ने कहा, मैंने कहा था छोड़ दो, नहीं तो, अरे नहीं तो क्या, अब चल, अब मैं बताऊंगी कि ये माया है, ये मायावी है। तो भगवान ने कहा, अब यदि फिर से ले जाओगी, पहली दफा तो मैं पुत्र बना था, अब तुम्हारा पति बन जाऊंगा वहां पर। तो प्रभावती ने, अरे छोड़ो इसे, भाग। तो भगवान माखन चोरी की ये सारी लीला क्या करते थे, परंतु भगवान ये माखन चोरी की लीला क्यों किया करते थे। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सारी गोपियां चाहती थी कि कन्हैया रोज आए और इनके घर का माखन चोरी करें, केवल खाए नहीं बल्कि चोरी कर खाएं, वो चाहती थी गोपियां। क्यों चाहती थी, ताकि उसके बहाने वो फिर से नंद भवन जा सके, शिकायत के बहाने, और शिकायत के बहाने फिर से कन्हैया का दर्शन हो सके उन्हें। तो भगवान के दर्शन हेतु वो प्रार्थना करती थी कि आज का जो माखन हम निकाल रही हैं, कृष्ण आकर चोरी करे, ताकि कृष्ण हमें एक बहाना दें, एक कारण दें यशोदा के घर जाने का, ताकि फिर से कृष्ण का दर्शन हो। तो इसलिए ये प्रार्थना करती थी, इसलिए भगवान जाकर वहां पर चोरी करते थे। और यदि एक दृष्टिकोण से हम देखें तो भगवान चोर हो ही नहीं सकते। चोर किसे कहते हैं, जो दूसरे की वस्तु को हड़प ले अपने लिए, उसे कहते हैं चोर। अरे जब भगवान ने कहा है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बोध भाव समन्वित, अरे जब भगवान से ही सब कुछ उद्धृत हो रहा है, भूमि आपो अनल वायु, भगवान कहे हैं सब कुछ मुझी से आ रहा है, तो क्या माखन इन गोपियों के घर का भगवान उसके स्रोत नहीं है। अरे तो भगवान अपनी ही संपत्ति को अपने ही अंदर डाल रहे हैं, तो चोर कैसे हुए। अब मान लो कोई व्यक्ति यदि अपनी ऊपर वाली जेब से 100 का नोट निकाले और उसे अपने पीछे वाली जेब में रख दे, तो क्या उसे कोई जेब कतरा कहेगा? जेब काटी, उसे जेब कतरा कहेगा कोई? अरे भाई, मेरी ही कमीज के ऊपर वाले जेब से मैंने 100 का नोट निकालकर दूसरी जेब में डाला तो क्या मैं चोर हुआ? तो जब भगवान अपनी ही संपत्ति यहां से वहां कर रहे हैं तो क्या वो चोर हुए? अरे जब सब कुछ उन्हीं का है, वही तो स्रोत है, तो ये माखन भी तो उन्हीं का है। तो भगवान चोरी की लीला कर रहे थे ताकि ये सारी जो गोपियां प्रार्थना कर रही थी कि भगवान आए और हमारे घर का माखन चोरी करे, ताकि हम उस दिन जाकर शिकायत के बहाने फिर से कन्हैया का दर्शन कर सके। तो भगवान की चोरियां बढ़ रही थी और माता यशोदा को हर रोज शिकायत पर शिकायतें आ रही थी। तो भगवान ने फिर ये दामोदर लीला, इस लीला को करने की ठानी। तो इसके चार कारण कौन कौन से हैं ये बताए गए हैं। आचार्य बताते हैं कि भगवान की जो दामोदर लीला हुई से करने के चार कारण कौन से। सबसे पहला कारण, भगवान यशोदा का यश बढ़ाने हेतु उन्होंने ये लीला की। यशोदा का अर्थ क्या है? जो भगवान श्री कृष्ण के यश को दूसरों को दे, वो है यशोदा। जैसे नारदा, जो श्री नारायण को दूसरों को दे, वो है श्रीपाद नारद। तो यशोदा वो है जो भगवान श्री कृष्ण के यश को दूसरों को दे। तो भगवान ने सोचा कि यशोदा ने अपना सारा जीवन केवल मेरे यश को दूसरों को देने के लिए लगा दिया है, परंतु इस लीला से मैं यशोदा का यश दूसरों को दूंगा। और इस लीला में हम देखेंगे कि भगवान से ज्यादा माता यशोदा का गुणगान हुआ है, माता यशोदा का यश बढ़ा है। तो ये सबसे पहला कारण था कि भगवान दामोदर लीला क्यों करना चाहते थे, माता यशोदा का यश बढ़ाने हेतु। भगवान भक्ति योग की महिमा स्थापित करना चाहते थे कि अलग अलग पद्धतियां हैं भगवत साक्षात्कार के लिए, ज्ञान योग, कर्म योग, इतने सारे योग हैं, अष्टांग योग, परंतु भगवान स्थापित करना चाहते थे कि भक्ति योग ये सर्वोपरि है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चाश्मि तत्वतः। अर्जुन को कहा भगवान ने कि यदि अर्जुन तुम्हें तत्वतः मुझे जानना है तो केवल भक्ति से मुझे तत्वतः जान पाओगे। और जैसे हमने सुना कि ब्रजवासियों का प्रेम, ब्रजवासियों की भक्ति भगवान के प्रति उस गाढ़े घी के समान थी जिसमें भगवान का ऐश्वर्य भी नहीं दिखाई दे रहा था उन्हें। एक सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जब श्री उद्धव जी नंद महाराज के पास गए, भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा और द्वारका चले गए थे, तो भगवान ने उद्धव को भेजा ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए। तो श्री उद्धव जी वृंदावन पहुंचते हैं ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए, तो उन्होंने देखा कि जमुना के साथ एक और नई नदी बह रही है। तो अब तक उन्होंने सुना था कि ब्रजमंडल में एक ही नदी है, वो है जमुना देवी। ये दूसरी नदी कहां से आ गई? तो वो उस नदी के तट पर चलते चलते उसका उद्गम स्थान ढूंढने के लिए निकले। तो श्री उद्धव जी उस नई नदी का उद्गम स्थान ढूंढते ढूंढते उसके तट से चल रहे हैं और पहुंचते कहां पर हैं? नंद भवन। नंद भवन से वो नदी निकल रही थी और वो नदी कौन सी नदी थी? नंद और यशोदा के आंसू थे वो। नंद और यशोदा के अश्रुओं की वो नदी बन गई थी भगवान श्री कृष्ण के विलाप में। तो श्री उद्धव जी जब वो पहुंचे तो उन्होंने नंद महाराज को जब देखा तो नंद महाराज भगवान के वियोग में विलाप कर रहे हैं और नंद महाराज इतना विलाप कर रहे हैं कि उनकी आंखें तक दिखाई नहीं दे रही अश्रुओं के कारण। तो श्री उद्धव जी वो सोच रहे हैं कि मैं इन्हें क्या सांत्वना दूं? अरे मनुष्य देह का परम उद्देश्य यही है कि वो इस स्तर को प्राप्त कर ले जब वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी आंखों से अश्रु बहाए, प्रेमाश्रु। अरे जब किसी जीव की आंखों से भगवान श्री कृष्ण के प्रति सोचते हुए प्रेमाश्रु बहते हैं तो ये सर्वोच्च उपलब्धि है उस मनुष्य की। और आज मेरे सामने नंद महाराज उस स्तर को प्राप्त कर चुके हैं जो मैं करना चाहता हूं, तो क्या मैं इनसे कहूं आप रो मत? अरे मुझे रोना चाहिए कि मुझे रोना नहीं आ रहा? तो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे कृष्ण, आपने मुझे बहुत कठिन सेवा दी है, बहुत कठिन सेवा है कि इन ब्रजवासियों को सांत्वना देने की सेवा। तो वो जो ब्रह्म ज्ञान है उसे सुनाना उन्होंने शुरू किया, भगवान के ऐश्वर्यों को सुनाना शुरू किया। तो नंद यशोदा और अन्य ब्रजवासी गण, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये ब्रह्म ज्ञान, ये भगवान का ऐश्वर्य। तो उदाहरण दिया गया है कि उद्धव जी ने देखा कि ब्रजवासियों की स्थिति कैसी है, जैसे अंधेरी रात में जब तारे, चंद्र और सितारे चमकते हैं, वो स्थिति यहां पर वृंदावन में मैं देख रहा हूं। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। वो कहते हैं कि यदि किसी को पूर्णिमा का चांद और चमकते टिमटिमाते सितारे देखने हैं तो कब देख सकेगा? वो सूर्य की रोशनी में, अंधेरे में, अंधेरे में, गहरे अंधेरे में पूर्णिमा का चंद्र बहुत ही प्रज्वलित दिखाई देता है और गहरे अंधेरे में जो तारे हैं, सितारे हैं, वो चमकते हुए दिखते हैं। तो ये सारे जो ब्रजवासी हैं ये भगवान के ऐश्वर्य से अंधा हो गए हैं, दिखता नहीं इन्हें भगवान का ऐश्वर्य। इसलिए उस अंधेरे में इन्हें भगवान जो वृंदावन चंद्र है, जो असली पूर्णिमा के चंद्र है, उनके प्रति ऐसा प्रेम है इनके अंदर कि मैं क्या इन्हें सांत्वना दूं? अरे मैं इनसे सांत्वना लेने आया हूं आज शायद। तो भक्ति योग की ये महिमा है। भगवान यशोदा के द्वारा भक्ति योग की महिमा स्थापित करना चाहते थे। ये दूसरा कारण। नलकुवर और मणिग्रीव, ये दो कुबेर के पुत्र थे और इन्होंने श्री नारद मुनि के प्रति एक बहुत बड़ा अपराध किया था। शिव अनुचर थे ये, कैलाश धाम में, शिवजी के उस पवित्र धाम में नग्न अवस्था में स्त्रियों के साथ ये मंदाकिनी गंगा में विहार कर रहे थे जिस समय नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे। तो नलकुवर और मणिग्रीव इतने बेशर्म कि उन्होंने अपने आप को ढका भी नहीं, अपनी नग्न अवस्था को ढका भी नहीं, और मदमत्त, नशे में मदमत्त ये नलकुवर और मणिग्रीव श्रीपाद नारद मुनि का अपराध इन्होंने किया, दुर्लक्ष किया। तो नारद मुनि ने इन्हें श्राप दिया, इन दो पुत्रों को, कुबेर के इन दो पुत्रों को। हालांकि सुखदेव गोस्वामी उसे श्राप नहीं कह रहे, भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तम अनुग्रहार्थाय, कि नारद मुनि का अनुग्रह था, कृपा थी नारद मुनि की इन दोनों कुबेर के पुत्रों के ऊपर कि इन्हें नारद मुनि ने दो वृक्ष बनाए, अर्जुन वृक्ष, वो भी कहां पर, ब्रजमंडल में। केवल ब्रजमंडल में नहीं बल्कि नंद भवन के आंगन में, जहां पर साक्षात परब्रह्म वो अपनी लीला कर रहे हैं, वहां पर इन दो नलकुवर और मणिग्रीव जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया था। अरे प्रकृति के नियम के अनुसार यदि नारद मुनि श्राप या अनुग्रह भी नहीं करते इनके ऊपर, तो भी नग्न अवस्था में उस प्रकार से विहार करने के वजह से उन्हें पेड़ की योनि मिलनी ही थी प्रकृति के नियम के अनुसार। तो नारद मुनि ने देखा वैसे भी पेड़ की योनि इन्हें मिलनी है, तो क्यों ना मैं इन्हें ऐसा पेड़ बनाऊं जो कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव सानिध्य, श्री वासुदेव का सानिध्य इन पेड़ों को मिले और उनके द्वारा इनका उद्धार हो। तो नारद मुनि के वाक्यों को सत्य करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस दामोदर लीला में ये जो दो पुत्र, ये आप जो देख रहे हो, नलकुवर और मणिग्रीव, इन दोनों का उद्धार, भगवान उखल से बंधे हुए, इसकी चर्चा हम करेंगे, भगवान इन दोनों पेड़ों को नीचे गिराकर ये दो जो सुंदर देवता, इनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो ये सब कारणों के वजह से भगवान ने श्री दामोदर लीला का प्रारंभ किया। तो दिवाली का दिन था, दिवाली के दिन माता यशोदा एकदा गृहदाशीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एकदा गृहदाशीषु, एक दिन दिवाली के दिन, दा का अर्थ होता है एक, दा का अर्थ होता है एक दिन, सदा जैसे कहते हैं हर समय, तो एक समय, एक दिन, एकदा गृहदाशीषु, घर की जितनी भी दासियां थी माता यशोदा ने इन सब दासियों को अन्य कार्यों में लगा दिया। दिवाली के दिन नामोदर लीला दिवाली के दिन हुई, तो दिवाली के उस दिन माता यशोदा ने सभी घर की दासियों को अन्य कार्य में लगा दिया। और अन्य कार्य क्या था उस समय, क्योंकि इंद्र याग, इंद्र पूजा, गोवर्धन पूजा जो आने वाली है, तो इंद्र पूजा आने वाली थी, तो माता यशोदा ने सभी दासियों को इंद्र पूजा की तैयारी में लगा दिया और माता यशोदा यही सोच रही थी कि ये सारी गोपियां आकर शिकायत करती हैं कि आज मेरे घर में माखन इसने चुराया, आज इसके घर में चुराया, ये उत्पात किया। तो माता यशोदा सोच रही थी शायद ये दासियां जो मेरे घर में माखन निकालती हैं, ये शायद ठीक से माखन नहीं निकालती, इसलिए निर्म मन था स्वयं दधी। स्वयं माता यशोदा उस दिन दही मथ रही थी माखन निकालने हेतु, क्योंकि माता यशोदा सोच रही थी अपने हाथों से आज मैं उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट मैं आज माखन निकालूंगी। और जीव गोस्वामी कहते हैं कि कौन सा उत्कृष्ट माखन उस दिन माता यशोदा निकाल रही थी। माता यशोदा ने अपनी 900,000 गायों में से आठ चुनिंदा गाय ली, जो एकदम सबसे उत्कृष्ट गाय थी 900,000 गायों में से, और उन गायों का नाम था पद्मगंधा। तो इन पद्मगंधा गायों को माता यशोदा ने चुना और इन आठ पद्मगंधा गायों को, इनमें से एक उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट गाय को लिया, पद्मगंधा गाय को। और माता यशोदा ने कहा गया है कि इन्हें पद्मगंधा क्यों कहा गया था, इन गायों को, आठ गायों को, क्योंकि माता यशोदा इन्हें बहुत ही उत्कृष्ट घास खिलाया करती थी, जिस घास को पद्मगंधा घास कहते थे। कि ये घास ऐसा था कि घास में से पद्म की गंध आती थी, कमल की गंध जिसमें से आए वो है पद्मगंधा घास। ये घास माता यशोदा इन गायों को खिलाया करती थी। तो इन गायों में से एक उत्कृष्ट पद्मगंधा गाय को बाकी सात गायों का पद्मगंधा दूध पिलाती थी माता यशोदा। तो एक पद्मगंधा गाय को बाकी सात पद्मगंधा गाय का पद्मगंधा दूध पिलाया जाता था और उस पद्मगंधा गाय का पद्मगंधा दूध माता यशोदा ने दिवाली के दिन उसका दही जमाया हुआ था। यहां पर हम माता यशोदा से क्या सीख रहे हैं कि जब भगवान को भोग चढ़े तो सबसे उत्कृष्ट वस्तु चढ़नी चाहिए भोग। ज्यादातर तो देखा जाता है कि भगवान की जगह ही घरों में ऐसी जगह होती है कि वैसे भी उस जगह का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, किचन के कहां कोने में, सीढ़ी के नीचे, वैसे भी वहां कोई कमरा नहीं बना सकते तो भगवान की जगह वहां बना दो। और जहां पर भगवान की जगह होनी चाहिए वहां पर हम रख देते हैं रावण को। कौन है वो रावण? टीवी। ये टीवी को रावण क्यों कहा गया है? क्योंकि रावण जब सीता का हरण करने आया, कहां किया रावण ने सीता का हरण? इसी नासिक क्षेत्र में। तो रावण जब सीता का हरण करने आया तो रावण क्या बन के आया था? साधु, एक सन्यासी के वेश में रावण आया था। तो ये टीवी भी जब भारत में आया तो रावण की तरह भेष बदल कर आया। सीता की तुलना की गई है हमारी भक्ति से, तो हमारी भक्ति का हरण करने के लिए ये टीवी रूपी रावण अपना भेष बदल कर आया। और इतना ही नहीं, रावण ने सीता का हरण करने से पहले क्या प्रयोजन किया? मारीच को भेजकर राम और लक्ष्मण को अलग कर दिया, क्योंकि रावण जानता था
कि जब तक राम और लक्ष्मण रहेंगे सीता के साथ तब तक मैं सीता का हरण नहीं कर सकता। तो पहले घरों में जो मुख्य स्थान घर का हुआ करता था वहां पर प्रभु श्री राम का ऑल्टर हुआ करता था। तो इस टीवी ने पहले क्या किया, राम के ऑल्टर को सीढ़ी के नीचे कर दिया ताकि सीता का हरण, हमारे अंदर की भक्ति का हरण कर सके। तो जैसे रावण एक सन्यासी के रूप में भेष बदल कर आया, वैसे ही ये टीवी आया 3 घंटे का नेशनल नेटवर्क, पहले कहा करते थे जब शुरू हुआ था 3 घंटे का केवल बातम्या, है ना, आमी यांना पाहिलं का, आमची माती आमची माणसं, आरोग्य संपदा, सुगम संगीत, फिर चित्रहार, धीरे 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 जब भक्ति को छीनने के निकट आया ये रावण तो रावण ने फिर अपना असली स्वरूप दिखाया जब उसने हरण कर लिया। दशमुखी दशानन ये रावण अपना 10 मुख दिखाने लगा। तो ये जो टीवी रूपी रावण है जो केवल 3 घंटे का नेशनल नेटवर्क दिखाने के लिए शुरू हुआ था, अब क्या स्थिति है इस रावण की, कितने सर हैं इसके, 200। अरे वो रावण भला था त्रेता युग था, कम से कम 10 था केवल उसका, केवल 10 मुख था उसका, इस रावण का 200 कितने सारे मुख। और प्रभु श्री राम की आरती छोड़कर सुबह सुबह सारा परिवार बैठता है इस रावण की आरती करने। मंगल आरती शुरू होती है इस रावण की, सुबह सुबह शुरू हो जाता है और रात्रि तक शयन आरती तक चलता रहता है। सब प्रकार की आरतियां भोग इसी रावण को। परंतु सीता और राम का मिलन किसने कराया, हनुमान जी ने। तो जब तक हमारे जीवन में हनुमान जी जैसे भक्त नहीं आएंगे तब तक सीता रावण की कैद में बनी रहेगी। तो यदि हमें हमारी जो चुराई हुई, रावण द्वारा चुराई हुई जो भक्ति है, सीता है, उसे फिर से राम से मिलाना है तो हमें हनुमान जी जैसे भक्त की शरण ग्रहण करनी होगी। तो क्या देखा जाता है कि यहां पर माता यशोदा पद्म गंध दूध के दही का माखन भगवान को अर्पित करने वाली है। तो ये माता यशोदा से हमें सीखना चाहिए कि जब भगवान को भोग चढ़े तो सबसे उत्कृष्ट वस्तु होनी चाहिए। इसे हमें याद है कि हमें जब कहा जाता था घर में कि भगवान को जाओ, भगवान को भोग चढ़ाओ, तो भगवान को भोग क्या चढ़ाते थे, मुझे याद है बचपन में मैं क्या करता था, इतनी सी कटोरी, वो कटोरी भी पता नहीं कहां से ढूंढ के लाए थे, कहां से ढूंढ के सबसे छोटी से छोटी कटोरी, उसमें 4 दाना मिश्री के, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी जय जगदीश हरे, फिर गाते थे ना। परंतु वास्तविक रूप में हम क्या गा रहे थे, इनके लिए तो छोटी से छोटी कटोरी में 2-3 दाना वो खड़ी साकर मिश्री के, और हमारे डाइनिंग टेबल में
रबड़ी पराठा, पनीर, पुलाव, भगवान के लिए चार दाना मिश्री और हमारे लिए रबड़ी खीर पूड़ी। तो हम वास्तविक रूप में आरती क्या गा रहे थे, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, स्वामी मैं ही हूं घर का, कि मेरा मुझको ही अर्पण हो रहा है क्या लागे तेरा। तो भगवान को सबसे उत्कृष्ट वस्तु अर्पित होनी चाहिए। माता यशोदा यहां पर अपने इस उदाहरण से बता रही है, पद्मगंधा गायों का पद्मगंधा माखन अब भगवान के लिए निकाल रही है। तो दिवाली के दिन माता यशोदा अपने ही हाथों से, और माता यशोदा को कहा गया है यशोदा नंद गेहिनी, वो नंद महाराज की पटरानी यशोदा, जो कि ब्रजेश्वरी, यशोदा का एक और नाम था ब्रजेश्वरी, ये यशोदा स्वयं, इतनी सारी दासियां परंतु स्वयं माता यशोदा भगवान की सेवा में लगी थी। और एक बहुत ही सुंदर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यानी यानी हगीतानी तदबाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। इस सुंदर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब बिलो रही थी उस दही को, माता यशोदा जब उस दही को बिलो रही थी, तो माता यशोदा की तरफ सुखदेव गोस्वामी अब अपना कैमरा रखे हैं, और मानो सुखदेव गोस्वामी अपने सामने यशोदा माई को देख रहे हैं, जैसे हमने वो चित्र देखा, मानो सुखदेव गोस्वामी अपने सामने यशोदा माई को उस दही को बिलोते हुए देख रहे हैं और परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, ये देखो ये यशोदा माई, ऐसे परीक्षित महाराज को दिखा रहे हैं, ये यशोदा माई वो जब उस माखन उस दही को बिलो रही थी तो क्या क्या कर रही थी। ध्यान से श्लोक में देखिए आप, यानी यानी ही गीतानी, माता यशोदा अपने मुख से अपनी वाणी से माता यशोदा गीत गा रही थी। कौन से गीत? फिल्मी गीत नहीं, पिक्चरों के गाने नहीं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को गीत में परिणित कर माता यशोदा उसका कीर्तन कर रही थी जब माता यशोदा दही को बिलो रही थी। तद बाल चरितानि च, कि अब तक भगवान ने जो जो बाल लीलाएं की हैं उन सब बाल लीलाओं को स्मरण करते माता यशोदा उन बाल लीलाओं को गीत में परिणित कर गा रही थी। और मुख से, वाणी से, जिह्वा से भगवान का कीर्तन हो रहा था, यानी यानी ही गीतानी। हाथों से क्या हो रहा था, इस श्लोक में कहा गया है, हाथ कहां लगे हुए थे? हाथ लगे हुए थे भगवान की सेवा में। तो हाथ लगे हुए भगवान की सेवा में, जिह्वा लगी हुई है भगवान के कीर्तन में। इतना ही नहीं, इसके साथ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्मरन्ति तान्य गायतः, गाते गाते सेवा करते करते मन कहां पर लगाया माता यशोदा ने? भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में। तो माता यशोदा अपने उदाहरण द्वारा विशेष रूप से गृहस्थों को क्या सिखा रही है।
कर्म होना चाहिए कृष्ण की सेवा, मन होना चाहिए कृष्ण के स्मरण में, और वचन कृष्ण नाम। कर्मणा मनसा वाचा। माता यशोदा अपने उदाहरण से इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कर्म था दधि निर्मंथने काले, दधि का मथना ये कर्म कृष्ण सेवा। तद बाल चरितानी यानी यानी गीतानी, अपने वचनों से वो भगवान के गीत गा रही थी और स्मरण वो भगवान का कर रही थी। इसे कहते हैं असली कर्म योग। ज्यादातर लोग जब गीता के विषय में सुनते हैं, विशेष रूप से भारत में, यदि पूछा जाए कि गीता पढ़ी है, हाँ जानता हूं गीता, किसी को भी मध्य रात्रि में गाढ़ निद्रा से भी उठा दो तो वो एक श्लोक सबको याद है गीता का, कौन सा? कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो उतना ही बोलते हैं लोग। भगवान ने कहा है, कौन से भगवान ने? तुम्हारे कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में, क्या कहा है? कर्मण्य व अधिकारस्ते, हमें हमारे कर्म करने का अधिकार है, इसलिए मैं असली भगवद गीता का अनुयायी हूं। क्यों? क्योंकि मैं कर्म में लगा हूं। इसलिए लोग कहते हैं कर्म ही पूजा। सुना है? आप में से कितने लोग हाथ उठाइए कर्म ही पूजा है इस सिद्धांत को मानते हैं? शर्माइए मत, उठाइए उठाइए। इसका अर्थ है बाकी लोग नहीं मानते। कर्म ही पूजा है ये सही सिद्धांत है, परंतु क्या हम इसे सही तरीके से समझे हैं कि नहीं? एक उदाहरण आपके सामने। एक चोर नासिक में, वो जाकर एक बैंक लूटता है। क्या करता है? बैंक लूटता है एक चोर यहां पर। तो बैंक लूटने के लिए उस चोर को बुद्धि लगानी पड़ी। बुद्धि लगानी पड़ी कि नहीं? अरे ऐसे ही कोई बैंक थोड़ी लूट सकता है, बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है बैंक को लूटने के लिए। तो चोर ने अपनी बुद्धि लगाई और अपने शरीर को भी लगाया, तो उसने कर्म किया अपने शरीर से अपने मन से। कौन सा कर्म? चोरी करने का, बैंक लूटने का कर्म। तो ये उसका कर्म हुआ। उसके पश्चात पुलिस अब उसके पीछे, तो पुलिस वो भी बुद्धि लगाती है कि नहीं चोर को पकड़ने के लिए, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो पुलिस अब अपनी बुद्धि लगा रही है और अपने शरीर से कर्म में लगी है उस चोर को पकड़ने के लिए। चोर ने अपनी बुद्धि और अपने कर्म को लगाया चोरी करने के लिए, पुलिस अपनी बुद्धि और कर्म को लगा रही उस चोर को पकड़ने के लिए। दोनों में से किसके कर्म को पूजित कहेंगे आप? कौन सा कर्म पूजा है? हाँ? पक्का? पुलिस? चोर का कर्म पूजा नहीं? क्यों? क्यों पुलिस का कर्म पूजा है? तीन कारण। कर्म पूजा तब होता है या पूजनीय कर्म वह है जब वो प्रामाणिक व्यक्ति के लिए किया जाए, जब प्रामाणिक कर्म हो। कर्म प्रामाणिक होना चाहिए, प्रामाणिक व्यक्ति के लिए होना चाहिए, प्रामाणिक चेतना में होना चाहिए। जब ये तीन नियम सिद्ध होते हैं, प्रामाणिक कर्म, प्रामाणिक व्यक्ति के लिए और प्रामाणिक चेतना में, तब वो कर्म पूजा है। ऐसा नहीं कि जो कोई उठाए चला कर्म कर रहा है और बोल रहा है कि मैं कर्म योगी हो गया। तो असली कर्म योगी माता यशोदा अपने उदाहरण से दिखा रही है कि कर्म होना चाहिए कृष्ण की सेवा हेतु, जिसमें मन और वाणी भगवान श्री कृष्ण में लगी रहे। तो ये माता यशोदा ने अपने उदाहरण से बताया। तो माता यशोदा दिवाली के दिन जब दही मथ रही है, तो माता यशोदा कीर्तन कर रही है। अब ये जो श्लोक है, ये दामोदर लीला के अंत में आता है। दामोदर लीला के अंत में सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को, मानो भगवान का अभिप्राय क्या था दामोदर लीला करने का, इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं। एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्यवश्यत स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। इस सुंदर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान माता यशोदा द्वारा दंडित, ऐसे भगवान माता यशोदा द्वारा दंडित उखल से बंधे हुए भगवान अब अपनी ये छवि सभी देवताओं को दिखा रहे हैं। सह ईश्वरः, सभी देवताओं को दिखा रहे हैं कि हे सारे देवता देखो 33 करोड़ तुम सब, क्या देखो, मुझे देखो जो मैं बंधा हुआ हूं एक कैदी के समान इस उखल से। एवं संदर्शिता, सम्यक दर्शन करो इसका, परंतु मैं बंधा किससे हूं, किसी डोरी से नहीं, किसी उखल से नहीं, स्वभृत्य वशेनापि, मैं बंधा हुआ हूं अपने ही भक्त के प्रेम के बंधन में, माता यशोदा के प्रेम के बंधन में मैं बंधा हुआ हूं। तो ये पहचान लो और इसका दर्शन करो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी श्लोक में कहते हैं एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यत, वो हरि जो सबको हर रहे हैं। इसलिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक और एक अष्टकम है, इसे कहते हैं चौराग्रगण्य पुरुष अष्टकम। इस अष्टकम में कहा गया है ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम गोपांगणानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्य पुरुषम नमामि। बहुत ही सुंदर कवि ने कहा है इसमें कि ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम, इस पूरे रचना में, इस पूरी रचना में कहा गया है कि वो जो चोर है, चौर अग्रगण्य, सभी चोरों में जो अग्र शिरोमणि हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके विषय में कहा गया है इसमें कि आपने क्या क्या चोरी की है। तो कहा है ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम, ब्रज में आपने नवनीत की चोरी की। नवनीत कहते हैं माखन को, तो नवनीत की चोरी आपने ब्रज में की। गोपांगणा नाम च दुकूल चौरम, जो गोपियां थी उनके वस्त्रों की चोरी आपने भी की। परंतु इतना ही नहीं, आप इतने बड़े चोर नहीं अब तक, इससे बड़े चोर आप कैसे बने? सबसे बड़े चोर चौराग्र गण्य पुरुषम, सभी पुरुषों में सभी चोरों में सबसे बड़े चोर आप कैसे बने? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, आपने इन सब लीलाओं से हमारे अनेक जन्मों के पापों को चुरा लिया। इससे बड़ी चोरी और कोई नहीं। आपने अपने नाम से, अपनी लीला से, अपने गुणों से, अपने धाम से, अपने भक्तों के द्वारा हमारे अनेक जन्मों के पाप, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, उसे आपने चुराया है। एक भक्त ने भगवान के प्रति ये प्रार्थना की है कि हे भगवान, आप माखन चोरी की लीला में लगे हो जिसमें सारी गोपियां आपकी शिकायत कर रही हैं, माता यशोदा आपके पीछे दंड देने के लिए भाग रही हैं, और आप चोरी से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप कोई स्थान ढूंढ रहे हो। तो भक्त ने अपनी प्रार्थना में कहा कि एक चोर को कौन सा स्थान सुरक्षित स्थान दिख पड़ता है? वो स्थान जहां पर अंधेरा हो, कोई देख ना पाए। तो अंधेरे स्थान में चोर अपने आप को छिपाना चाहता है चोरी के पश्चात, है कि नहीं? जब पुलिस चोर के पीछे भागती है तो चोर एक तो अंधेरे में चोरी करता है और अंधेरे में अपने आप को छिपाना चाहता है। तो ये भक्त ने कहा कि हे माखन चोर, आपने जो चोरी की, आप भाग रहे हो माता यशोदा आपके पीछे, आप एकांत अंधेरा स्थान ढूंढ रहे हो, मेरे पास है ऐसा अंधेरा स्थान कि जिसके अंदर इतना घुप अंधेरा है कि आपको कोई नहीं ढूंढ पाएगा, कोई आपको देख नहीं पाएगा। उस अंधेरे एकांत स्थान में वहां आप छिप जाओ। और वो स्थान कौन सा उन्होंने बताया? मेरा हृदय। इससे अंधेरी जगह आपको नहीं मिलेगी। इतना तमोगुण, इतना तमस, इतना अंधकार मेरे हृदय में है कि यदि इसके अंदर आप अपनी जगह बना लो तो कोई आपको इस अंधेरी जगह में ढूंढ नहीं पाएगा। हे भगवान, इसलिए भगवान को कहा गया है चौराग्र गण्य पुरुषम नमामि अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। सबसे बड़ी चोरी उन्होंने क्या कर ली? हमारे पापों की चोरी, हमारे पापों की चोरी, न केवल पापों की चोरी बल्कि हमारे पापों के परिणामों की चोरी कर ली है। विशेष रूप से इस कलयुग में भगवान जो हरिनाम के रूप में आए हैं, केवल भगवान का एक नाम, केवल नाम ही नहीं बल्कि केवल नाम का एक अक्षर हमारे अनेक जन्मों के पापों से हमें मुक्ति दिलाने वाला है। तो भगवान इसलिए चोरों में अग्रणी हैं। तो भगवान इन सभी देवताओं को दिखा रहे हैं, एवं संदर्शित यंग हरिणा भृत्यवश्यत, कि तुम सब अपने आप को ईश्वर मानते हो। सह ईश्वर, अरे तुम्हें सब पद दिया किसने? मैंने। कल हमने इसकी चर्चा की कि 33 करोड़ देवता सारे कौन हैं? मंत्री, जिनके प्रधानमंत्री हैं श्री दामोदर। तो ये 33 करोड़ देवता जो कि केवल अधिकृत मंत्री हैं और इन्हें अधिकार दिया है इनके ईश्वर ने, हालांकि इन्हें भी ईश्वर कहा गया है, इन देवताओं को भी ईश्वर कहा गया है, परंतु इनके परमेश्वर हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण। तो ये अपने इस लीला में, इन देवताओं को ये दर्शन दे रहे हैं, उखल से बंधे हुए एक कैदी के समान अपने इस छवि को दिखा रहे हैं कि देखो तुम सब ईश्वर सह ईश्वर स्ववशेनापि कृष्णेन, मैं कृष्ण वश में आ गया हूं, मैं जो तुम्हारा ईश्वर हूं मैं वश में आ गया हूं। किसके? भृत्य माता यशोदा के। तो हमने देखा मृदभक्षण लीला में भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, विश्वरूप दिखाया भगवान ने मृदभक्षण लीला में, परंतु इस दामोदर लीला में भगवान ने अपने ऐश्वर्यों का परित्याग कर दिया, और वो भी केवल माता यशोदा को दिखाते हुए नहीं, अपने सारे ऐश्वर्यों का परित्याग भगवान ने किया इन सभी ऐश्वर्यशाली देवताओं को दिखाते हुए। सम्यक दर्शितः स्ववशेनापि, दर्शन करो सभी देवताओं की, भक्त जो है वो सर्वोपरि है, वो मुझसे भी ऊंचे हैं। तो भगवान ने अपनी इस दामोदर लीला में विशेष रूप से सभी देवताओं को और हम सबको ये दिखाया, ये दर्शाया कि भगवान ने अपने कौन से 8 ऐश्वर्यों का परित्याग किया। तो आज हम केवल कुछ ऐश्वर्यों को लेंगे और कल कितने सारे ऐश्वर्य भगवान ने इनका कैसे परित्याग किया, इसकी पूरी चर्चा आज और कल में मिलकर होगी। तो भगवान अब ऐश्वर्यों का परित्याग करने के लिए शुरू हुए। फिर से हम लीला में जाते हैं। लीला में हम कहां तक पहुंचे थे? दिवाली का दिन माता यशोदा दही मथ रही है, सुबह का समय भगवान गाढ़ निद्रा में सोए हुए हैं। भगवान गाढ़ निद्रा में सोए हैं, माता यशोदा वो सेवा हेतु दही मथ रही है, और यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च, भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र को गीत में परिणित कर गा रही है। स्मरंती तान्य गायतः, स्मरण भी कर रही है। तो भगवान ने श्री नारद मुनि से एक बार कहा था, नारद मुनि ने एक बार भगवान से पूछा कि मैं जब भी किसी को प्रचार करने जाता हूं तो मुझे ये प्रश्न सभी लोग पूछते हैं कि तुम्हारा नाम है नारद जो नारायण को दे, तो बताओ कि ये नारायण कहां पर इनका निवास स्थान है। कोई कहता है ये सर्वव्यापी हैं, कोई कहता है ये वैकुंठपति हैं, तो इनका ठिकाना, इनका परमानेंट एड्रेस किधर है। तो नारद मुनि एक बार भगवान से पूछ रहे थे कि भगवान आप ठीक ठीक बताओ आपका परमानेंट एड्रेस किधर है, ताकि लोग जब मुझसे पूछते हैं तो मैं बताऊं कि ये इनका परमानेंट एड्रेस है, यहां पर ये मिलेंगे अवश्य ही। तो आप सुनना चाहेंगे भगवान ने नारद मुनि से क्या कहा, उनका परमानेंट एड्रेस कहां है? नहीं सुनना चाहेंगे? ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। क्या कहा भगवान ने नारद से? नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी नहीं निवास करता, वो भी मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं है नारद। तो नारद मुनि थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। तो फिर योगिनां हृदयेषु वा, जो बड़े बड़े योगी समाधस्थ ध्यानस्थ बैठे हुए हैं मेरे ध्यान में, मैं उनके ध्यान में भी नहीं हूं, उनके हृदयों में भी मैं नहीं आ रहा, वहां पर भी मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं मिलेगा। तो नारद मुनि ने पूछा, तो फिर कहां आप मिलेंगे? यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहां पर, जिस स्थान पर, जिस समय, जिस स्थिति में मेरे भक्त एकत्रित होकर जब वो कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, मेरा परमानेंट एड्रेस कहां पर है? जहां पर मेरे भक्त एकत्रित होकर जब मेरी कीर्ति का गान करते हैं, जब मेरा कीर्तन करते हैं, वो स्थान है जहां पर मैं उपस्थित रहता हूं। तो यहां पर माता यशोदा क्या कर रही है? कीर्तन, यानी ही गीता, नहीं तो भगवान को वहां पर उपस्थित होना ही पड़ेगा। तो भगवान तुरंत अपनी गाढ़ निद्रा से उठे, माता यशोदा का कीर्तन सुनते हुए, और तुरंत भगवान अब रेंगते हुए, अपने घुटनों पर चलते हुए, भगवान माता यशोदा जहां पर दही को मथ रही है वहां पर भगवान पहुंचे। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी और अन्य आचार्य गण हमें बताते हैं कि भगवान को जब भी बुलाया गया तो भगवान को बहुत ही सुंदर प्रार्थनाओं से उनकी कीर्ति का गान करते हुए बुलाया गया। इसलिए यदि हमें भी अपने जीवन में भगवान को अवतरित करना है, यदि भगवान को अपने जीवन में लाना है, तो भगवान की कीर्ति का गान हर समय होते रहना चाहिए। तो भगवान उठे, रोज की तरह ये थोड़ा अलग दिन था। जैसे ही भगवान उठते रोज, माता यशोदा वो तैयार रहती भगवान को अपने गोद में सुलाकर स्तनपान कराने के लिए। रोज माता यशोदा तैयार रहती, परंतु आज के दिन जैसे ही भगवान उठे तो भगवान ने देखा कि माता यशोदा आसपास नहीं। तो भगवान भूखे, जैसा छोटा बच्चा उठते ही माता का दूध मांगता है, तो भगवान अब तुरंत तम स्तन्य काम आसाद्य, तम स्तन्य काम आसाद्य, कामना तुरंत भगवान के अंदर हुई। किसकी कामना? स्तन्य काम आसाद्य, माता यशोदा के स्तनपान करने की कामना। यहां पर यह हम सीखते हैं कि हम अपने मन में जो विचार रखकर सोए थे, पूरे दिन भर जो हमने विचार रखा, वही रात्रि के समय सोने से पहले हमारे मन में वो विचार रहते हैं। और जो हम विचारों के साथ रात में सोते हैं, सुबह उन्हीं विचारों में हम उठते हैं और रात्रि में उन्हीं विचारों को हम स्वप्न में देखते हैं। अब समझ गए अब मैं क्या कहने वाला हूं। तो हमारी रात्रि कैसे बीतती है आजकल? रात्रि का समय कैसे बीतता है? टीवी के सामने हाथ में वो रिमोट कंट्रोल लिए लिए, और आंखें कान ये सब कुछ वही देख सुन रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के विपरीत है। तो वो सब कुछ विचार लिए और ये सब कुछ विचार पूरे दिन भर लिए, रात्रि में जब हम सोचते हैं तो जब सुबह उठते हैं तो क्या विचार आता है? वही भोग वांछा, कप टी। उठते सो कहां है मेरी कप टी, कहां है टीवी का रिमोट, उठते ही सो वो उसका विचार। परंतु यहां पर देखिए, भगवान जब उठ रहे हैं तो सबसे पहले माता यशोदा का विचार कर रहे हैं। कहां पर है तमस्तान्य काम आसाद्य, कहां पर है मेरी माता? तो यहां पर भगवान अपना सबसे पहला ऐश्वर्य, उसका भगवान परित्याग कर रहे हैं। भगवान का नाम है आत्माराम। आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान को आत्माराम कहा गया है। आत्माराम का अर्थ क्या है? आत्माराम ये भगवान का वो गुण है जिसमें बताया गया है कि भगवान को बाहरी कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है अपने आप को परिपूर्ण बनाने के लिए। भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, भगवान आत्माराम है, अपने आप में परिपूर्ण है। बाहर की कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थिति भगवान को परिपूरित नहीं कर सकती। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, क्योंकि मैं आत्माराम हूं इसलिए मेरे लिए कोई कर्म भी निर्धारित नहीं। नमाम कर्माणि लिंपन्ति न मे कर्म फले स्पृह। भगवान ने कहा कि मुझे न तो कोई कर्म करने की आवश्यकता है, और यदि मैं कोई कर्म भी करता हूं तो वो कर्म मुझे कभी बांध नहीं सकता। तो कर्म किसे कहते हैं? भगवान ने भी दिखने में तो बहुत से कर्म किए। भगवान सांदीपुनि मुनि के आश्रम में गए एक शिष्य की भांति, भगवान ने गीता सुनाई, भगवान ने 16,108 रानियों के साथ शादी की, द्वारकाधीश की तरह द्वारका को संभाला। भगवान ने बहुत से कर्म दिखने में पड़े उनके करते हुए, परंतु कर्म की परिभाषा क्या है? अपूर्णस्य निज पूर्थार्थे चेष्टा इति कर्मति। कि कर्म कहते हैं कि जब कोई अपूर्ण व्यक्ति, हम जैसे अपूर्ण, जब अपनी अपूर्णता को भरना चाहते हैं, अपूर्णता को पूर्ण करना चाहते हैं, जब हम चेष्टा करते हैं, उसे कहते हैं कर्म।
अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे चेष्टा इति कर्मति, कि उस चेष्टा को, अपूर्णता को भरने की चेष्टा को कर्म कहते हैं। जैसे कि रोज सुबह हमें ऑफिस जाना पड़ता है, काम पर निकलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यदि ऑफिस नहीं जाएंगे तो जेब अपूर्ण रहेगा। ये जेब पूर्ण नहीं रहेगा यदि ऑफिस नहीं जाएंगे तो काम पर जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है जेब को पूर्ण करने के लिए। और जेब पूर्ण क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि यदि जेब पूर्ण होगा तो पेट पूर्ण होगा। तो पेट पूर्ण होने के लिए, जेब पूर्ण होने के लिए कर्म करना पड़ता है। तो इसलिए उन हमारी चेष्टाओं को कर्म कहते हैं। परंतु भगवान के अंदर अपूर्णता है ही नहीं। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशोपनिषद में कहा गया है कि भगवान वो पूर्ण है जिनसे सभी पूर्ण निकल रहे हैं और वो कभी अपूर्ण नहीं रहते। तो भगवान जो कि पूर्ण है उन्हें कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को किसी के दूध पीने की आवश्यकता नहीं है अपने आप की पूर्ति करने हेतु। तो भगवान मानो देवताओं को दिखा रहे हैं, देखो एवं संदर्शित, सम्यक दर्शन करो कि मैं इस यशोदा का दूध पीने के लिए जा रहा हूं। मैं जो आत्माराम हूं, कोई आवश्यकता नहीं है इस आत्माराम को किसी के दूध पीने की। तो भगवान ने ये अपना सबसे पहला ऐश्वर्य, इसका परित्याग किया। क्या दिखाते हुए भगवान उठे हैं? और भगवान तुरंत तमस्तन्य काम आसाद्य, भगवान उठे हैं और भगवान अब अपने आप को पूर्ण करने के लिए, माता यशोदा का स्तनपान करने के लिए निकले माता यशोदा की तरफ। तो भगवान जब वहां पर पहुंचे तो माता यशोदा गीत गाते हुए ध्यान में भगवान के, कृष्ण सेवा, कृष्ण नाम, कृष्ण स्मरण में। तो भगवान अब पहुंचे और जो मथनी थी, मथनी जिससे माता यशोदा मथ रही थी, जिसे शायद मराठी में रवि कहते हैं, तो भगवान ने अपने एक हाथ से उस मथनी को पकड़ा, और अपने दूसरे हाथ से माता यशोदा का आंचल खींचा। तो भगवान ने दो कार्य एक साथ सिद्ध किए कि इसे रोको, स्तनपान कराओ। तो भगवान ये भी सोच रहे थे, बताया गया है कि जो शास्त्र का अध्ययन लोग करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी शास्त्रों का जब वो अध्ययन करते हैं तो शास्त्रों के अध्ययन को संस्कृत में मंथन कहते हैं। कि जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं कि एक दूसरे से जब वो मिलते हैं तो वो पूछते हैं, अरे मंथन हो गया तुम्हारा? अर्थ क्या? कि शास्त्र का अध्ययन हो गया। तो शास्त्र के अध्ययन को मंथन कहा गया है। तो यहां पर भगवान मानो माता यशोदा को संकेत कर रहे हैं कि अरे भाई, सारे शास्त्रों को यदि कोई मथेगा तो सारे शास्त्रों को मथ कर उसका सार क्या निकलेगा उसमें से? मैं वेदश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है
कि इन वेदों का, शास्त्रों का स्रोत मैं हूं, रचयिता मैं हूं, इन शास्त्रों से मुझे ही जानना है, भगवान ने कहा है, और इन शास्त्रों में मेरे ही बारे में उल्लेख किया गया है, तो मुझसे ही निकले हुए शास्त्र, मेरे ही बारे में कहे हुए ये शास्त्र, मैं ही इन शास्त्रों का स्रोत सार हूं। तो भगवान माता यशोदा को कह रहे हैं कि अरे भाई, यदि शास्त्रों के अध्ययन को मंथन कहा गया है और तुम इस मंथन में लगी हो, तो जो मंथन के स्रोत और सार हैं वो तुम्हारे सामने खड़े हैं, बंद करो इस मंथन को। तो भगवान क्या हमें संकेत दे रहे हैं कि यदि किसी ने बहुत शास्त्र भी पढ़ लिया परंतु यदि भगवान श्री कृष्ण को नहीं जाना तो काला अक्षर भैंस बराबर, केवल भैंस के बराबर ही उसने अक्षरों को देखा है। तो इसलिए भगवान ने अपने एक हाथ से मथनी को पकड़ा और दूसरे हाथ से माता यशोदा के आंचल को। तो जैसे ही भगवान ने यह क्रिया की तो वहां पर माता यशोदा तमंकम आरूढ़म आपयत प्रीतिम आवहन, तुरंत माता यशोदा ने वो दही को मथना छोड़ दिया। तम अंकम, तुरंत माता यशोदा ने अपने अंक में भगवान को सुलाया। जैसे कि हमने पूतना के विषय में भी सुखदेव गोस्वामी ने जो कहा उसके विषय में चर्चा की, तम अंकम आरोपयद अनंतम अंतकम, पूतना ने भी भगवान को अपने अंक पर लिया, तो पूतना ने उन अनंत को अपने अंक पर लिया न जानते हुए कि ये मेरे अंतकम है। परंतु यहां पर माता यशोदा ने भगवान को अपने अंक पर लिया, क्यों? प्रीति आवहन, ऐसा स्तनपान कराने हेतु कि जो किसी माता ने किसी पुत्र को नहीं किया हो, प्रीति, प्रीति के साथ। और माता यशोदा मुस्कुरा रही थी। माता यशोदा के मुस्कुराने का कारण यह था कि माता यशोदा ने देखा कि देखो, मेरा यह छोटा सा लाला कितना बुद्धिमान हो गया कि ये जानता है कि यदि मेरा ध्यान केंद्रित इसे करना है अपनी तरफ तो इसे ये मथनी को पकड़ना होगा। तो जैसे कि हर कोई माता अपने छोटे से बच्चे को बड़ा होते देखती है तो बहुत प्रसन्न चित्त होती है, वो जब बड़ा बच्चा बुद्धिमानी का कार्य करने लगता है तो माता बहुत गर्व करती है। तो माता यशोदा यहां गर्व से प्रीति आह्वान हंस रही थी कि देखो कितनी बुद्धि आ गई इसके अंदर कि मेरा ध्यान केंद्रित करने के लिए इसने मथनी को पकड़ा और मेरे आंचल को खींचते हुए संकेत कर रहा है स्तनपान कराओ। तो भगवान ने अपनी इस क्रिया से कि मैं आतुर हूं, हे यशोदा मैं आतुर हूं तुम्हारे दूध का, तो भगवान ने जो उनका पहला ऐश्वर्य आत्माराम, कि उन्हें आत्माराम को भी आवश्यकता पड़ रही है किसी के दूध की, परंतु वो दूध नहीं, केवल माता यशोदा के स्तनों में केवल दूध नहीं था, माता यशोदा के स्तनों में गाढ़ा कृष्ण प्रेम था दूध के रूप में। इसलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब माता यशोदा दही को मथ रही थी तो माता यशोदा के स्तनों से दूध चुचुआ रहा था। भगवान के आने से पहले तो माता यशोदा के स्तनों में जो दूध था वो दूध सोच रहा था। आप सोच रहे होंगे कि दूध भी सोचता है। हाँ, आध्यात्मिक संसार में वहां पर कोई जड़ पदार्थ नहीं है। आध्यात्मिक संसार में सभी व्यक्ति हैं, भगवान के भक्त हैं। तो माता यशोदा के स्तनों में जो दूध है वो भी एक व्यक्ति है। तो माता यशोदा के स्तनों का दूध सोच रहा था कि आज माता यशोदा स्वयं दही मथ रही है अपने हाथों से, तो अपने हाथों से माखन निकला हुआ जब ये खिलाएगी कान्हा को तो कान्हा कहां हमें पिएंगे। तो उनका पेट तो इस दिव्य माखन से भर जाएगा, तो कहां जगह रहेगी हमारे लिए इनके पेट में। तो वो सारे जो दूध माता यशोदा के स्तनों से बाहर निकल रहे थे, अब जीने का क्या फायदा, चलो, वो ये सोच रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि माता यशोदा जब दही मथ रही थी तो माता यशोदा के कंगन बज रहे थे। तो कंगन सोच रहे थे, वो भी व्यक्ति हैं, वो भी भक्त हैं भगवान के। तो कंगन सोच रहे थे कि माता यशोदा के दोनों हाथ दही को मथने में लगे हैं। जैसे कि हम जब कीर्तन करते हैं तो यहां पर कोई मृदंग बजाने वाला होता है, कोई करताल बजाने वाला होता है। तो इन कंगनों ने सोचा कि कोई करताल बजाने वाला नहीं, कीर्तन तो हो रहा है, यानी यानी गीतानी, तो कोई करताल बजाने वाला नहीं। तो दोनों कंगन, चारों कंगनों ने सोचा कि चलो हम ही बजना लगते हैं। तो वो बजने लगे माता यशोदा के कीर्तन में ताल देते हुए। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो कुंडल थे माता यशोदा के कानों के, जो कुंडल थे वो कुंडल भी बज रहे थे। माता यशोदा के कानों के कुंडल इसलिए बज रहे थे, वो सोच रहे थे क्या भाग्य है इन कानों का, क्या भाग्य है इन कानों का कि साधारणतः तो जब कोई भगवान का कीर्तन करता है या भगवद गीता का श्रवण करता है तो वो भगवान का नाम अंदर ले रहा है, परंतु यहां पर तो स्वयं भगवान रोज अपनी वाणी इन कानों में डाल रहे हैं। तो माता यशोदा के कान साक्षात भगवान की वाणी रोज सुनते थे। तो सोचिए क्या सौभाग्य है उन कानों का कि जो साक्षात भगवान की वाणी रोज सुनते रहे। तो कुंडल सोच रहे थे कि अरे भाई, ऐसे जो महान कर्ण हैं इनके ऊपर हम सज रहे हैं। तो कुंडल सोच रहे थे कि हम कर्णों के ऊपर सज रहे हैं, न कि हम सजा रहे हैं। वो अपने आप को भाग्यशाली मान रहे और इसलिए वो बजते हुए नाच रहे थे कि ये सौभाग्य है हमारा। और माता यशोदा के केशबंद में जो मालती के पुष्प थे, माता यशोदा जब दही मथ रही थी तो मालती के पुष्प गिर रहे थे। वो सोच रहे थे कि का सौभाग्य है इस यशोदा माई का, और हम ऐसे उद्दंड कि ऐसी सौभाग्यशाली यशोदा माई के माथे के ऊपर अपने आप को रखे हैं, अरे इनके चरणों पर होना चाहिए हमें। तो मालती के पुष्प गिर गिर कर वो माता यशोदा के चरणों पर गिरने लगे। तो यहां पर भगवान ये सारी स्थिति को देखते हुए, मुआयना करते हुए अब माता यशोदा को कह रहे हैं, ये सब कुछ बंद करो और मेरी सेवा में लगो। इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम् त्वाम् सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत अर्जुन, डरो मत, यदि तुम सभी धर्मों को त्याग कर मेरी सेवा में लगोगे तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डर किस लिए होता है? पाप, पाप के वजह से डर होता है, पाप के वजह से पाप के परिणामों का डर होता है। तो भगवान कहते हैं यदि तुम सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओगे अर्जुन, तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। तो यही भगवान माता यशोदा को बता रहे हैं कि इन सब को त्यागो और अब मेरी सेवा में लगो। तो भगवान ने अपना सबसे पहला जो ऐश्वर्य आत्माराम होने की जो उनकी पदवी है उसे भगवान ने त्याग दिया। तो भगवान अब आगे अपने कौन कौन से ऐश्वर्यों को त्यागेंगे इसकी चर्चा हम करेंगे कल। कितने ऐश्वर्य बाकी रह गए हैं? 7। हमारा प्रयोजन था कि आज कम से कम 4 ऐश्वर्य हम लेते, परंतु हमारे अंदर इतना ऐश्वर्य नहीं कि हम इतना बैठकर, इतना सौभाग्य हमारा नहीं कि इतने समय तक बैठे और कहें और सुने। तो इसलिए कथा को हम आज यहीं पर विराम देंगे, परंतु जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, भगवान ने कौन कौन से अपने ऐश्वर्यों का परित्याग किया इसकी चर्चा हम कल के हमारे भाग 2 दामोदर लीला के भाग 2 में लेंगे। और विशेष रूप से आज हम हमारे कीर्तन में एक बहुत ही सुंदर अष्टकम है जो कि सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित पद्म पुराण में इसका वर्णन है, इसका कीर्तन करेंगे। तो आप सब ध्यान से, आपके सामने ये जो संस्कृत की रचना है यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, तो आप ध्यान से कीर्तन में यदि उसका उच्चारण कर सकें तो धुन में उच्चारण कीजिए। और बहुत ही सुंदर है ये दामोदर अष्टकम, ये कार्तिक के महीने में दामोदर अष्टकम जो है ये पूरा महीना सुबह शाम वैष्णव भक्तगण गाते हैं। तो इसका कीर्तन पहले होगा, उसके पश्चात फिर हरे कृष्ण का कीर्तन कुछ समय के लिए। और दीप, और आप सबको जहां पर आप बैठे हैं आपको दीप दिए जाएंगे, क्योंकि ये प्रथा है कि इस दामोदर अष्टकम के कीर्तन के साथ भगवान श्री दामोदर जो आप देख रहे हो वहां पर ऑल्टर पर भी, तो इनको आप अपना बैठे बैठे जहां पर आप बैठे हैं वहीं से आप दीप दिखा सकते हैं। और दीप दिखाने के पश्चात भक्त आएंगे, वो दीप लेंगे और फिर भगवान के समक्ष रखेंगे आपके अर्पित दीप। दीप अर्पित करने का अभिप्राय यह है कि हम हमारे जीवन में जो अंधकार है उसे दूर करना चाहते हैं, जीवन के अंधकार को दूर करना चाहते हैं इस दीप को भगवान को दिखाते हुए। तो आप लोग कृपया बैठे रहिए और इस पूरे दामोदर अष्टकम का ये जो कीर्तन है और दीप का अर्पण जो होगा इसमें आप भाग लीजिए,